भगवते
वासुदेवाय
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज के 25 दिसंबर 2014 इस शुभ दिवस पर आप सबका ताकेद स्थान में स्वागत है। आपको कौन सी भाषा पसंद है? अंग्रेजी हिंदी?
हिंदी, हिंदी।
सबके लिए हिंदी ठीक है?
हिंदी।
सबको समझ में आता ना हिंदी? हरे कृष्णा नक्की ना। सो प्रभु रामचंद्र भगवान सीता देवी लक्ष्मण भगवान श्रीमान जटायु जी महाराज इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज और सभी वैष्णव जन इनके असीम कृपा से हम सब लोग अभी श्री टाकेद स्थान पर बैठे हुए हैं। श्री टाकेद स्थान जो है ये दंडकारण्य में आता है। दंडकारण्य जो है वो चित्रकूट से आरंभ होता है, चित्रकूट समाप्त होता है तो दंडकारण्य आरंभ होता है और आगे भी दक्षिण दिशा में बहुत विस्तार में ये फैला हुआ है। और यही वो जो पावन भूमि है जहाँ पर प्रभु रामचंद्र ने सीता देवी और लक्ष्मण भगवान के साथ में अपने वनवास का आखिरी साल बिताया, यानी कि 13 साल चित्रकूट धाम में और 14वां साल जो है वो दंडकारण्य में, दंडक वन दंडकारण्य। शास्त्र के अनुसार ये बहुत ही रमणीक स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है, सघन वृक्षों से भरा हुआ है, फल फूल से संपृक्त है और भजन के लिए बहुत अनुकूल है। इसलिए अगस्त्य मुनि का आश्रम भी इसी विभाग में है। अगस्त्य मुनि जी का आश्रम जो है वो यहाँ से 28 किलोमीटर दूर है और अगस्त्य मुनि ने वहाँ पर तपस्या किया था और प्रभु रामचंद्र सबसे पहले चित्रकूट से जब निकले थे तो वो अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए थे। तो अगस्त्य मुनि के आश्रम में आने के बाद में अगस्ती मुनि को उन्होंने बोला कि हमें आप ऐसी जगह सुझाव दीजिए जहाँ पर हम लोग अपना आखिरी साल बिता सकते हैं। तो अगस्ती मुनि ने उनको बताया कि दंडक वन में, दंडकारण्य में गोदावरी जहाँ बहती है वो किनारा आपके लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पर गोदावरी पश्चिम दिशा से दक्षिण दिशा में घूमती है। दक्षिणा अभिगामी दक्षिण दिशा में वो टर्न हो जाती है। तो वो स्थान जो है वो जहाँ नदी, कोई भी नदी जब दक्षिण में घूमती है तो वो बहुत अति पवित्र हो जाती है, मोक्ष का साधन बन जाती है। भगवान की भक्ति के प्रदान करने वाला शक्ति उस नदी को प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु रामचंद्र ने अगस्ती मुनि के निर्देश के अनुसार यहाँ से फिर वो गोदावरी किनारे गए हैं। और ये स्थान जो है ये श्रीमान जटायु महाराज का स्थान है जहाँ पर जटायु वीर गति को प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हम सब लोग हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके, हृदय को एकाग्र करके श्रीमान जटायु महाराज को हृदय से सादर प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे, उनकी कृपा याचना करेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे। क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही उत्कट स्थान है, वेरी इंटेंस प्लेस। वैसे वृक्षों के सानिध्य से ये सुंदर तो है ही, कि जहाँ पर सघन वृक्षावली होती है ये वृक्ष जो हैं ये यहाँ की चेतना को स्वीकार करते हैं। जो भी इस जगह के भाव है, चाहे वो हजारों करोड़ों साल पहले लीला क्यों ना हुई हो, लेकिन जब कोई भगवान की तीव्र लीला घटित होती है तो उसका जो चेतना, उसकी जो भाव, उसका जो भाव है वहाँ पर चिरंतन काल के लिए बना रहता है। तो हमारा जैसा नहीं, हम आए कुछ किया और गए तो हमारा प्रभाव खत्म हो जाता है। जो ठाकुर जी आते हैं, उनके भक्त लोग आते हैं, वो कोई उत्कट लीला करते हैं जन सामान्य के उद्धार के लिए, तो उसकी चेतना भी चिरंतन काल के लिए वही रहती है। और वो कैसे रहती है? वो वृक्षों के माध्यम से रहती है। वृक्ष जो है उस चेतना को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हम लोग जब भी कथा करते हैं तो वृक्षों के सान्निध्य में करते हैं। ऐसे हमारे महाराज जी का आदेश भी है, क्योंकि वृक्षों ने जो देखा है और जो ग्रहण किया है वो यहाँ आने वाले प्रामाणिक यात्रियों को वो चेतना दे देते हैं। तो इसलिए हम कथा जो है वो ऐसे वृक्षों के नीचे करते हैं। तो अभी हम जटायु जी की कथा आरंभ करेंगे। बहुत रोचक कथा है। इस कथा को अगर आपको सब हर चीज के, हर एक आइटम के रूप में ग्रहण करना है तो आपके हाथ में नोटबुक होना चाहिए और पेन होना चाहिए, क्योंकि इस कथा के बहुत अंग हैं, बहुत अलग अलग कथाएं एक व्यक्ति की कथा में आती है। हाँ, तो कथा आरंभ होती है दशरथ के युवा अवस्था से। और दशरथ महाराज और उनकी पत्नी कौसल्या देवी और कैकेयी देवी और सुमित्रा देवी, ये बहुत सुंदरता से अयोध्या में रहते थे। उच्च चक्रवर्ती सम्राट थे और अयोध्या उनका राजधानी था। तो दशरथ महाराज ने तपस्या किया था बहुत तीव्रता से। पुराने जमाने में सब राजा तपस्या करते थे। प्रभु रामचंद्र भी अपने गुरुकुल में जाके तपस्या किया, यहाँ पर भी तपस्या किया है। हर एक राजा बनने के पहले तपस्या करते थे। राजा प्रियव्रत, उत्तम पुत्तमपाद, हमारे वैदिक इतिहास में जितने भी राजा हुए हैं वो तपस्या करते हैं। दशरथ महाराज की तपस्या का प्रभाव क्या था, परिणाम क्या था, कि शनि का काल उनके राज्य पर कभी भी कार्यान्वित नहीं होगा। हर एक व्यक्ति के कुंडली में या हर एक स्थान के या देश के कुंडली में टर्न बाय टर्न सभी ग्रहों का काल आता है। बृहस्पति काल आता है, गुरु काल, फिर मंगल काल, फिर बुध काल, सब दशाएं आती हैं, उसमें शनि की भी दशा आती है। ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई चॉइस नहीं आपको कि मुझे ये पहले दे दो बाद में वो दे दो, जो अच्छा है पहले दे दो बाद में कष्ट वाला दो, या डिफिकल्ट जो पहले दे दो, ऐसा नहीं होता है। वो खगोल शास्त्र के अनुसार और भविष्य शास्त्र के अनुसार, एस्ट्रोलॉजी सब शास्त्र के अनुसार इनका सीक्वेंस होता है। तो वो सीक्वेंस के अंदर जब शनि का समय आएगा तो शनि का प्रभाव, उनका काल का प्रभाव नहीं होगा, ऐसा उन्हें प्राप्ति हुई। हाँ, कितनी बड़ी प्राप्ति है मालूम है आपको? खैर, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि शनि का काल कभी खराब नहीं होता है। लोग उसको डरते हैं, हाँ, लेकिन शनि का काल कभी खराब नहीं होता है। शनि का काल खाली आपको आपकी परीक्षा लेता है, आपको कष्ट देता है और आपको प्रवृत्त करता है कि कुछ पाप करो। लेकिन अगर हम भक्त हैं भगवान के और कितनी भी ऐसी कठोर समस्याएं आने के बाद भी अगर हम अपने आप को संतुलन में रखते हैं और अपने मन के संतुलन को खोते नहीं हैं, भगवान का भजन निरंतर कृतज्ञ भाव में करते रहते हैं, तो फिर उस काल में कोई हम बुरा कर्म नहीं करेंगे। आम आदमी जब भी शनि काल में त्रस्त होता है तो फिर वो नशा कर लेता है, शराब पी लेता है, कुछ अलग कार्य करता है मन को बहलाने के लिए, क्योंकि इतना कष्ट होता है उसको। लेकिन भक्त को जो मन के कष्ट है उसको संभालने के लिए भगवान की भावना, भगवान की भक्ति साधना काम आती है। तो इस तरह से शनि का काल अयोध्या में आना बंद हो गया। बहुत साल बीत गए, बहुत चक्र समाप्त हुए। एक दिन शनि महाराज को लगा कि बस हो गया, अभी हमको अपना ड्यूटी करना चाहिए। तो शनि निकले अपना प्रभाव अयोध्या पर डालने के लिए और यथावकाश दशरथ महाराज को यह समाचार मिला कि शनि जी आ रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत रथ को जोड़कर सेना को लेकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। मतलब इसके पहले कि शनि आ जाए उसके पहले उनको रोका जाए, सोचना भी हमारे लिए कितना मुश्किल है। अरे कौन शनि कहाँ रहता है, वी डोंट नो। उनको रोकने के बाद तो दूरी है, लेकिन हम अभी कलयुग की सोच से बात कर रहे हैं और ये घटना कभी हो रही है? त्रेता युग में हो रही है, सत्ययुग में नहीं हो रही है, त्रेता युग में। दशरथ महाराज की लीला जो है प्रभु रामचंद्र की, वो त्रेता में हुई है। तो आज से उस समय का जो तंत्र ज्ञान बहुत प्रगत था, एडवांस था, तो ये लोग जमीन पर भी लड़ते नहीं थे, अवकाश में लड़ते थे। आप जानते हैं हिरण्यकशिपु का, हिरण्याक्ष का, वरादेव का युद्ध कहाँ हुआ था, कौन सी जगह हुआ था, कौन सी भी जगह पर नहीं हुआ था, वो तो अवकाश में हुआ था। अरे जो व्यक्ति ने पृथ्वी को लात मारकर गेंद की तरह नदी में, समुद्र में फेंक दिया है और फिर दूसरे व्यक्ति ने उसको गेंद की तरह अपने सिंगों पर उठाकर बाहर लाया है, वो थोड़ी पृथ्वी पर खड़े रहेंगे, वो कहाँ खड़े रहेंगे? वो तो गेंद है उनके लिए, तो वो अवकाश में युद्ध करते हैं। इस तरह से ये अपना रथ लेकर आकाश में गए, हाँ, और घनघोर युद्ध शुरू हुआ। और ऐसा नहीं कि पेड़ के पीछे छुप के गोली मारेंगे फिर वापस गुफा में जाएंगे, खंडक में, फिर वापस से गोली मारेंगे फिर छुप जाएंगे, ऐसा नहीं है। फेस टू फेस, वो भी दिव्यास्त्र, मंत्र बोलेंगे और बाण छोड़ेंगे तो वो अलग अलग इफेक्ट देगा, वो आग लगाएगा या तो वर्षा करेगा या तो बर्फ फेंकेगा आपके ऊपर या तो फ्रीज करेगा आपको या तो आपको जला देगा। अग्नेयास्त्र, पर्जन्यास्त्र, निहारास्त्र, सोमास्त्र, ऐसे ऐसे सोचकर आपको काटना है उसको, अस्त्र को छोड़ने के बाद परिणाम होने के पहले। ऐसे भयंकर, हमारी बुद्धि इतनी त्रुटक है कि हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते, इतना कॉम्प्लिकेटेड एंड सटल सूक्ष्म युद्ध हो रहा है। और वो युद्ध कैसा होता है, हमारे यहाँ पे युद्ध कैसा होता है, 3 महीना युद्ध हो गया तो बाद में समाप्त हो जाता है। यहाँ पर 3,000 साल तक युद्ध चलता है। गजेंद्र का और मगरमच्छ का युद्ध कितना साल चला? 1,000 साल, स्वर्गीय 1,000 साल, 6 महीने का एक दिन होता है और 6 महीने की उसकी उतनी रात भी होती है, वो एक दिन बनता है। ऐसे 1,000 साल गजेंद्र और मगरमच्छ का युद्ध हुआ, हाँ, मतलब नो स्लीप इन द नाइट बाय द वे। और जनता भी देख रही है उसको, जनता भी ऐसे ही ताकते रह गई है। तो ऐसे बहुत समय तक युद्ध होता है और अचानक शनि का अस्त्र जो है वो दशरथ महाराज को बेहोश करता है। अवकाश में अपने रथ से वो गिर जाते हैं और बड़ी तेजी से जमीन पर आ रहे वो। उस समय श्रीमान जटायु महाराज, दशरथ महाराज के बहुत पुराने मित्र थे वो, इतने विशाल उनके पंख थे, वो तुरंत अपने पंख ऐसे फैलाते हैं लाइक अ नेट और अ प्लेटफॉर्म, और गुरुत्वाकर्षण के गति से भी अधिक गति से नीचे जाकर दशरथ महाराज को झेल लेते हैं अपने पंखों पर। आप समझ सकते हैं कितना जल्दी उनको एक्शन करना पड़ता हो पड़ा होगा। एक झटके में वो बेहोश हो गए, झटके में रथ से गिर गए, उतने में सोच विचार करके उनको इतनी गति से नीचे जाना है कि दशरथ महाराज कहीं गिर ना जाए। बेहोश अवस्था में उनको पकड़ लेते हैं, फिर अच्छी तरह से हवा में उड़ते हुए नीचे लेके आते हैं और शुश्रूषा करते हैं उनकी और उनको होश में लाते हैं। जैसे ही दशरथ महाराज होश में आते हैं, चिल्लाने लगते हैं, शनि महाराज कहां पर हो? फिर देखते हैं कि यहां पर तो मेरे मित्र जटाई खड़े हैं। तो वो कहते हैं कि आप बेहोश, मैंने मुझे यहां पर क्यों लेके आया, चलो मुझे ऊपर ले चलो, ऐसे कार्य आपने क्यों किया? मैंने कहा कि आप बेहोश हो गए थे इसलिए हमने आपको उठाकर यहां लाया है, चलो दोबारा ले चलो। तो फिर दोबारा अवकाश में जाकर रथ ग्रहण कर लेते हैं। अभी आप सोचिए, शनि जैसे देवता का अस्त्रों का भार प्रहार सहन करके बेहोश होके दोबारा खड़े होकर फिर चुनौती देने का साहस किसमें हो सकता है? दशरथ महाराज इतना आघात सहन करके भी इतने वीर हैं कि दोबारा खड़े हो गए चुनौती के लिए, सावधान शनि मैं आ रहा हूं। तो ये देखकर ही शनि महाराज प्रसन्न हो गए, अरे मेरे सामने कोई मेरे अस्त्र का आघात सहन करके दोबारा खड़ा भी हो सकता है, दोबारा युद्ध करने के लिए खड़ा हो सकता है, यही उनको प्रसन्नता दे गया। तो उन्होंने कहा युद्ध समाप्त, हम आपको वादा करते हैं कि कभी भी आपके राज्य पर शनि का प्रभाव नहीं होगा। शनि ने कोशिश किया, एक्चुअली स्पीकिंग ये लीला क्यों हुई है, दशरथ महाराज का जो सही गौरव है उसको प्रकाशित करने के लिए लीला हुई। तो शनि महाराज को तो आने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने तो ऑलरेडी तपस्या कर चुके थे ना वो। लेकिन दशरथ महाराज केवल भक्त और तपस्वी नहीं थे, वो एक वीर क्षत्रिय भी थे, रघुवंश में रघुवंशी थे वो। तो उस समय जटायु ने जो ठीक समय पर जो सेवा किया उसके कृतज्ञ भाव रखते हुए दशरथ महाराज ने उनको वादा किया कि मैं तो अभी भी विवाह कर चुका हूं, मुझे अभी संतान नहीं है, जब मुझे पहला पुत्र होगा ज्येष्ठ पुत्र वो मैं आपको प्रदान करूंगा। ऐसे नहीं कहा कि आपको एक मोटरसाइकिल गाड़ी भेज देंगे, आपको एक रथ आपको दे देंगे या तो 1000 हाथी दे देंगे। हाँ, प्रेम होता है ना तब ऐसी बातें होती है। अभी तक उनको पुत्र नहीं हुआ है, अभी तो विवाह संतान, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पुत्र एक आप ले लेंगे, अभी कुछ भी नहीं है। फिर मित्रता का ऋण जो है उसके लिए बोल रहे हैं कि आप मेरा ज्येष्ठ पुत्र मैं आपको दे दूंगा। तो ठीक है, फिर ये लीला समाप्त होती है। यथावकाश जानते हैं कि दशरथ महाराज को और रानियों को कई सालों तक युद्ध नहीं, पुत्र नहीं होता है। तो फिर वशिष्ठ मुनि को मिलते हैं वो, और वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि एक ऋष्यशृंग ऋषि है, वो उनकी एक लंबी कथा है, एनीवेज विस्तार में नहीं जाएंगे हम। लेकिन वो उनके पिताजी ने उस मुनि को जब जन्म दिया था तो वो ऐसा रखा था कि स्त्री का दर्शन ही ना हो, उसको पता ही नहीं स्त्री नाम की कोई चीज होती है, सब मेल्स स्टूडेंट्स जो भी है ऐसा संभाल कर रखा था कि कोई जंगल में कोई स्त्री नहीं है वहां पर। और वशिष्ठ मुनि ने कहा कि उसी के द्वारा जब यज्ञ होगा उसको कहते हैं पुत्र कामेष्टि, पुत्र काम इष्टि मतलब पुत्र के इच्छा से, पुत्र के काम, काम यानी कि इच्छा, पुत्र की इच्छा से किया हुआ यज्ञ, तो वो करने के लिए वो आएंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। तभी कैसे उसको लाया जाए, तो उन्होंने कुछ सुंदर कन्याओं को भेजा और जहां पर जिस वन में वो रहते थे आश्रम में, वन के बाहर उन्होंने एक डेरा जमा लिया और रोज वहां पर सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के और श्रृंगार पहन के नृत्य करना, वाद्य बजाना। तो ये वहां पर आए लकड़ी तोड़ने के लिए, कुछ फल बीनने के लिए, तो देखा तो अरे कुछ अजीब जीव यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, उनको मैंने कभी देखा नहीं है, है तो पुरुष ही सब लोग लेकिन कुछ अलग, उनके शरीर में कुछ अलग अलग अवयव हैं। तो जैसे ही वो आते हैं वहां पर तो ये स्त्रियां जाके उनको गले मिलती है बहुत जोर से, तो उनको बड़ा विचित्र आनंद होता है, बहुत ऐसा कभी आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। और वो देखता है कि ये कुछ डिफरेंट प्लेनेट के शायद मनुष्य है और फिर वो वहां उसको उठा के ले, उनकी बहुत दोस्ती होती है, मैत्री होती है, बहुत प्रेम से उनको खाना खिलाते हैं, भोजन करते हैं, ऐसा ऐसा भोजन खिलाते हैं जब उसने जंगल में कभी खाया नहीं उसको। वो कहते ये तो हमारी झलक है, हम तो बाहर गांव आए हुए हैं, हमारे शहर में चलो आप, हमारे घर चलो, फिर आपको और आनंद आएगा। इस तरह से फिर उसको लेके आते हैं, उसका विवाह भी होता है, फिर उनके द्वारा दशरथ महाराज का पुत्र कामिष्ठी यज्ञ होता है। रामायण में बड़ी लंबी कथा है कैसे उनको उन्होंने लाया वहां पर। एनीवेज तो पुत्र कामिष्ठी यज्ञ होता है और यज्ञ में से आप जानते हैं खीर प्रसाद प्राप्त होता है और दशरथ महाराज उसका दो हिस्सा करते हैं, एक हिस्सा कौशल्या को देते हैं और बचा हुआ हिस्सा जो है वो आधा आधा करके सुमित्रा को और कैकेयी को देते हैं। फिर मेरे ख्याल से दो करते हैं हिस्सा और एक हिस्सा कौशल्या को देते हैं, एक हिस्सा कैकेयी को देते हैं, फिर दोनों मिलके अपना आधा आधा हिस्सा सुमित्रा को देते हैं। इस तरह से कौशल्या को प्रभु रामचंद्र की प्राप्ति होती है और जो उनका हिस्सा सुमित्रा के गर्भ में गया है उससे लक्ष्मण का जन्म होता है। इसलिए राम लक्ष्मण का जो कौशल्या के हिस्से से गया था इसलिए उनका अति स्नेह होता है, और जो कैकेयी के हिस्से से गया उससे भरत जी और शत्रुघ्न का जन्म होता है। कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म होता है और सुमित्रा के गर्भ से शत्रुघ्न का जन्म होता है, और शत्रुघ्न और भरत जी का रिश्ता वैसा ही है जैसे राम और लक्ष्मण का है। तो अयोध्या में बहुत खुशियां हो जाती, सब जगह आनंद फैलता है। और जब वो जन्म की बधाई चल रही है, आप जानते हैं जब राजा का बालक होता है तो बहुत बधाइयाँ होती है, बहुत प्रकार के भाट आते हैं, उसको कहते हैं मागध, उसको कहते हैं वंडी, उसको कहते हैं अलग अलग प्रकार के गायक होते हैं, जो एक गायक इतिहास गाते हैं, एक गायक वर्तमान गाते हैं, एक गायक गुणों का वर्णन करते हैं, ऐसे ऐसे अलग प्रकार के भाट आते हैं और जो श्रुति गान गुणगान करते हैं राजा का उत्सव के अनुसार प्रसंग के अनुसार। भगवान राम कृष्ण का जन्म हुआ था तभी भी वसुदेव सॉरी नंद महाराज के यहाँ पर ऐसे अलग अलग प्रकार के भाट आए थे। एनीवेज तो ये सब चल रहा है, अच्छी तरह से बधाइयां गाई जा रही है, अचानक दशरथ महाराज ज्येष्ठ पुत्र राम को उठाते हैं, जिनका रंग कैसा है, दुर्वा जैसा रंग है, ये दुर्वा जो दिखते हैं ना आपको यहाँ पर हरा रंग है उनका, सुंदर भगवान प्रभु रामचंद्र को उठकर सीधे चलने लगते हैं, सीमा के बाहर चले जाते हैं। सब रानियां देखते रहते हैं, अरे इतने मंगल प्रसंग पर कहाँ जा रहे बालक को लेके, और दूर देखते हैं तो क्या अयोध्या की सीमा पर एक बड़ा गीदड़ बैठा हुआ है जो एक पहाड़ के समान है, सफेद रंग का विशाल काय, इसकी चोटी आसमान को बादलों में छू रही है, ऐसा विशाल काय जो गीदड़ है वो बैठा हुआ है। अभी गीदड़ कभी आता है, जब मौत होती है तो गिदड़ आता है, तो गिदड़ का दर्शन जो है बड़ा अशुभ माना गया है, और खास करके शुभ घटना जब होती है तो ये गिदड़ का दर्शन बहुत अपवित्र और इट्स लाइक अ बैड ओमेन, तो सभी लोगों को बहुत दुख होता है। एक तो राजा बालक को लेके निकल गया, दूसरा अयोध्या की सीमा पर एक बड़ा गिदड़ आके बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है उनको समझ में नहीं आता है, सब बड़े दुखी हो जाते हैं, और एक तो सस्पेंस है पूरा, राजा ने कुछ बताया भी नहीं है, सीधे चार में से एक बालक को लेके चले जाते हैं और जटायु को मिलते हैं। मित्र जटायु, जो हमने आपसे वादा किया था हम पूरा करने आए हैं, लीजिए इस मेरे ज्येष्ठ पुत्र को मैं आपको प्रदान करता हूँ। जटायु मित्र के कृतज्ञता और प्रेम से बड़े प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो गीध हूँ, मुझे मनुष्यों के बालक को लालन पालन करने का ट्रेनिंग नहीं है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे मनुष्यों के बालकों को कैसे बड़ा करते हैं। हाँ, जिस किसी को नींद आया वो खड़े हो जाए, हाँ, लेकिन इस कथा में सोना नहीं है आपको, क्योंकि ये बहुत ही मार्गदर्शक और श्रेष्ठ कथा है, और हम लोग इतने दूर सफर करके आए हैं इस जगह का सार समझने के लिए, इस जगह का भाव समझने के लिए, और जटायु का जो चेतना है कॉन्शियसनेस उसको ग्रहण करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, केवल मनोरंजन करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हम लोग इतना दूर। जटायु इस व्यक्तित्व में ग्रहण करने जैसा क्या भाव है जो हमारे जीवन में हमको उपयोगी हो सकता है, उसको जितना हो सके उतना ग्रहण करने के लिए हम लोग आए हैं। हमारी अलग अलग कैपेसिटी हो सकती है, कौन कितना ग्रहण करने का वो खुद को मालूम है, लेकिन जितनी हमारी चेतना है उतने में अधिक से अधिक जटायु का भाव ग्रहण करके अपने जीवन में अमल करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। वी आर नॉट जस्ट कम टू फॉर एंटरटेनमेंट। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, जटायु कहते हैं कि हम नहीं उनको पाल सकते हैं, तो आप अपने पास ही रखिए, जब यवा अवस्था में आ जाएगा तो फिर हम आएंगे लेने के लिए। इस तरह से दोनों गले मिलते हैं और जटायु अपने जगह चले जाते हैं जो यहाँ पर है। ये जटायु का राज्य है बाय द वे, दंडक वन में जटायु रहा करते थे, ये पूरा उनका वन है। तो लौट के आते हैं फिर दशरथ महाराज अपने दुर्वा रंगी सुंदर बालक को लेकर लौट के आते हैं। तब सब लोग परेशान थे, जो खुश हो जाते हैं, तब उनको बताते हैं कि ये ऐसी ऐसी घटना हुई थी, जब मैं शनि के साथ लड़ रहा था तो मैंने उनको वादा किया था तो मैं वो पूरा करने के लिए गया था। लेकिन जटायु का भाव सुनकर सब प्राणियां प्रसन्न हो जाती हैं और यथावकाश जो है प्रभु रामचंद्र जी धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। हम जानते हैं वो गुरुकुल में जाते हैं, सब शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर कुछ समय के बाद नव किशोर नव युवक श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न बड़े होते हैं और प्रभु रामचंद्र के बारे में कहा गया है कि वो बचपन से ही बहुत ही प्रगल्भ थे। उनका हर एक व्यवहार जो था अपने भाइयों के प्रति, हर एक में वो एक जैसे पांडवों में वो थे युधिष्ठिर महाराज, वो कैसे थे, जब भी कोई समस्या आती थी तो इनका व्यवहार इतना श्रेष्ठ हुआ करता था कि पांचों भाइयों को, चारों भाइयों को अच्छी तरह शांत करके वो समझा देते कुछ ही बात को। कोई क्रोध कर रहा है, कोई कुछ अलग भावना में आता है तो ये सबसे ऊपर शांतता से उसको निवारण करते थे। वैसे ही जब कोई बाण मारकर फल तोड़ते थे तो ये फल मेरा है, इसमें दो बाण लगे हुए हैं, तुम्हारा भी मेरा भी, तो ये किसका पहले लगा और किसका गहरा है, तो किसका अधिकार होना चाहिए। अभी बालक लोग, क्षत्रिय बालक है ना वो, तो बाण से ही मार रहे हैं, वो पत्थर नहीं फेंक रहे हैं वो फल को निकालने के लिए। तो ये हर समय पर प्रभु रामचंद्र जो है वो अपने भी फल जो है वो त्याग भाइयों को देते थे। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, इतने बालक होने पर भी अपने छोटे भाइयों को बहुत संभाल के और बहुत समझ बूझ के चलते थे वो। यथावकाश 12 साल के हुए तो विश्वामित्र मुनि आए। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि मैं जंगल में निवास करता हूं और इस जंगल में बहुत खूंखार राक्षस हैं, वो हमारे यज्ञ में बहुत बाधा डालते हैं, मलमूत्र फेंकते हैं और हमारा यज्ञ सिद्ध नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, तो हम आपके राम नामक ज्येष्ठ पुत्र को लेने आए हैं। दशरथ महाराज कहते हैं अरे वो तो इतने कोमल हैं, इतने छोटे हैं, अभी उनसे तो ठीक से धनुष भी नहीं उठ पा रहे हैं, ठीक से बाण भी नहीं उठा पा रहे हैं। हालांकि स्थिति ऐसी नहीं थी, 12 वर्ष की अवस्था में पूरी तरह से वो निपुण हो गए थे धनुर्विद्या में और युद्ध कला में, सब चीज में। लेकिन पिता का जो वात्सल्य होता है ना, अभी हमारे घर में हमारी 80 साल की दादी थी और जहां तक मुझे नॉलेज है और याद है मेरे पिताजी भी कुछ 60 साल के थे, मतलब 55 साल के होंगे, तब भी मेरी दादी मेरे पिताजी को एक छोटे बालक की तरह डांटती थी। hey, उठो, देखता नहीं आज सोमवार है फिर भी तुम इतने लेट उठ रहे हो, मतलब छुट्टी का दिन है पिताजी का दुकान का। लेकिन जैसे हम लोग बोलते ना उठो 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 9 बज गए हैं, तो वैसे पिताजी को डांटती थी हमारे सामने, क्योंकि बालक तो हमेशा बालक ही होता है और माता का और पिता का भाव हमेशा वात्सल्य का ही होता है। तो वैसे ये बात कहाँ से निकली, दशरथ महाराज अपने पुत्र के बारे में कह रहे हैं कि इतने कोमल है इनके हाथ, ये तो धनुष इतना भारी उठ भी नहीं पाता है, आप मुझे ले चलो, मेरी चतुरंगी सेना के साथ ले चलो और मैं आपको जहां चाहिए वहां पर आऊंगा और जिस राक्षस को चाहिए उसका वध करूंगा। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं ये आपका काम नहीं है, ये काम जो है ये राम का ही है, ये राम ही कर सकता है। तो हर तरह से वो कोशिश करते हैं मुनि जी को मनाने के लिए। अभी मुनि जी को ज्यादा बात ज्यादा देर काटनी भी नहीं चाहिए, ये भी एक मर्यादा है और मन में भय भी है कि अपने बालकों को कोई हानि पहुंच जाए तो वो भी देखना है, एक वात्सल्य है एक जगह पर, मर्यादा एक जगह वात्सल्य है, तो बहुत संभल के आर्गुमेंट कर रहे हैं। फिर बाद में मुनि जी के सामने उनको हार माननी पड़ती है और रामचंद्र और लक्ष्मण जी तुरंत तैयार हो जाते हैं, उनको जंगल में ले जाते हैं। फिर यथावकाश, बड़ी लंबी लंबी कथा है महाभारत में, हमको तो जटायु के आख्यान तक पहुंचना है। तो ताड़का और सुबाहु इनका वध होता है, उसके बाद मारीच भी आ जाते हैं। तो मारीच को वो ऐसा एक बाण मारते हैं प्रभु रामचंद्र कि वो 100 योजन आकाश में उड़ता है उस बाण के प्रभाव से, और वो आकाश में उड़ के समुद्र में जाके गिर जाता है। समुद्र कौन सा पास में इसमें, सबसे अरबी समुद्र हो सकता है ना, दक्षिण मानव दक्षिण तो हिंदी महासागर बहुत दूर है यहाँ से, और सौ योजन का मतलब कितना होता है 800 मील, कुछ 1500 के आसपास किलोमीटर समझ सकते हैं, तो उतना तो हिंदी महासागर उससे भी दूर है यहाँ से, तो वो अरबी सागर हो सकता है जो यहाँ से इतना दूर नहीं है। तो वो बाण की चोट खाकर मारीच जो है वो 100 योजन आकाश में उड़कर समुद्र में गिर जाता है, और कहते हैं कई महीने वो बेहोश रहता है समुद्र के अंदर। फिर जब होश में आता है तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है राक्षसी कार्य से ही। इसके आगे हम लोग अभी मनुष्य बाण वो माया भी विद्या विद्या सब कुछ छोड़ देंगे, क्योंकि इतना डर लगता है उसको कि राम से क्या र नाम से भी उसको वो कांपने लगता है, और सन्यास लेकर जंगल में तपस्या के लिए बैठ जाता है। फिर उसके बाद में यथावकाश प्रभु रामचंद्र को विश्वामित्र मुनि मिथिला देश लेके जाते हैं, फिर स्वयंवर होता है, फिर सीता जी को प्राप्त करते हैं, फिर विवाह होता है, और फिर बारात अयोध्या में आती है। बड़ा सुंदर वर्णन है हा? जैसे ही प्रभु रामचंद्र जो है वो प्रण जीतते हैं, क्या प्रण था वो किसी को याद है? शिव धनुष। जनक राजा को उन्होंने बहुत बड़ा युद्ध किया था पहले, उसमें देवताओं की सहायता की थी। जनक राजा ने नहीं, जनक राजा के बहुत पूर्वजों ने, उनका एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, उस राजा ने, जनक राजा के पूर्वजों ने, एक राजा ने बहुत मदद किया था देवताओं का। तो उस समय शंकर भगवान ने जो धनुष यूज किया था वो उनको उन्होंने भेंट में दे दिया। उसका वजन केवल 1,00,000 भार था। 1 भार कितने का होता है? 1 भार कुछ कुछ मनों का होता है, और 1 मन 40 किलो का होता है। 1,00,000 भार का वजन था उसका, और उसको 300 बहुत शक्तिशाली योद्धा मल्ल जो है वो 300 रखते थे उठाने के लिए, यहाँ से वहां रखने के लिए। और उसको रखने के लिए राजा ने एक बड़ा सा, जैसे इतना इलाका है ना, ऐसा पूरा इलाका उन्होंने एक महल के रूप में बनाया था, और उसमें उसको रखा था। और कभी उत्सव होता था तो उसको बाहर ले आया करते थे। रत्नों से भरा हुआ था वो धनुष। जब भी सीता जी का जन्म हुआ तो उसका जन्म की कहानी ऐसी है कि चलो सब देखते हैं कितना समय होता है उतना बता दे कहानी। ये सब इतिहास आपको समझना जरूरी है जैसे हम प्रसंग पर आएंगे। वेदवती नाम की एक सुंदर देवी थी, उसको वेदों की कन्या भी कहते हैं, लेकिन वो नाम वेदवती था उसका, और वो विष्णु भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती रहती है। इतनी सुंदर औरत थी वो कि देवता की औरतें भी, देवताओं की औरतें भी उतनी सुंदर नहीं थी उनके सामने, लेकिन इतनी सुंदर होने के बावजूद भी बिना कोई अलंकार और राजवस्त्र, ऐसे कोई सुंदर वस्त्र और सुंदर श्रृंगार किए बिना, केवल पेड़ की खाल पहनकर वो जंगल में तपस्या कर रही थी। और तब रावण जो है वो तपस्या करके, जन्म होने के बाद, बड़े होने के बाद तपस्या करके, ब्रह्मा जी से शिव जी से वरदान प्राप्त करके, उद्दंड होने के बाद में कुबेर से युद्ध करते हैं, क्योंकि कुबेर के पास सब देवताओं का धन दौलत होता है ना, ट्रेजरी, कोश कोश कोषागार, और कुबेर के पास पुष्पक विमान भी था जो बहुत ही सुंदर था। केवल मन से जब आदेश करेंगे उतनी गति से जाएगा, और जहां जाना है वहां जाएगा, केवल मन के आदेश के अनुसार, नौ सारथी। और कैसा था वो, एक बड़े अनेक शहरों के मिलकर कितनी जगह होती है, इतनी जगह थी उसके अंदर, और मन के इच्छा के अनुसार वो बड़ा भी होता था और छोटा भी होता था, कोई फिक्स साइज नहीं था उसका, और कोई पेट्रोल नहीं, कोई ईंधन नहीं, कुछ नहीं, कोई सारथी नहीं। उसके अंदर पहाड़ भी थे, उसके अंदर नदी नदी भी थी, उसके अंदर सरोवर भी था, ऐसा पूरा एक अनेक शहरों से मिला हुआ एक जमीन होता है ना, वो भी आकाश में उड़ने वाला एकदम रमणीय स्थान, सुंदर एकदम, जड़ी बूटी अलंकार से भरा हुआ। इसने कुबेर के साथ युद्ध किया, और कुबेर वैसे उसका सौतेला भाई भी है रावण का, लेकिन एक देवता है एक राक्षस है, तो युद्ध करके कुबेर को परास्त कर दिया, इतने बलवान योद्धा को परास्त कर दिया, और उसका रथ छीन कर उसको परास्त करके धन पे पूरा कब्जा करके वो लौट रहा था। अब राक्षस की प्रवृत्ति क्या होती है, हु इज अ राक्षस अकॉर्डिंग टू यू? जो भी दिखता है वो मेरा होना चाहिए, जो भी भोग्य वस्तु है वो मेरे होनी चाहिए, जो भी सुंदर वस्तु है वो मेरे होनी चाहिए। इट्स ओनली मेंट फॉर माय सेंस ग्रेटिफिकेशन, केवल मेरे भोग के लिए बनाई गई है और मुझे ही प्राप्त होने चाहिए। तो ये आकाश से पुष्पक चुराए हुए विमान से, हाँ, युद्ध में जीते हुए विमान से लेकर उड़ रहे हैं, अचानक जमीन पर इस सुंदर स्त्री को तपस्या करते हुए देखते हैं, तो क्या विचार है? ये मेरी होनी चाहिए, ये सुंदर है, अच्छी है, तो मेरी होनी चाहिए। उतरता है, पूछता है, देवी आप कौन हो? कहते हैं, मैं वेदवती हूँ। यहाँ पर जंगल में क्या कर रही हूँ? इतना सुंदर तुम्हारी कांति, इतने सुंदर तुम्हारे केश, इतना सुंदर तुम्हारा मुख कमल, यहाँ पर बैठने के लिए नहीं है, आप हमारे अंतपुर में चलो, हमारी रानी बनो, तो आपको मैं ऐसे रखूंगा, आप याद करो, यहाँ पर क्यों पेड़ के खाल पहनकर बैठ रही हो? तो कहती है कि मैं श्री विष्णु भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ, और वही मेरा एक जीवन का लक्ष्य है, और मेरे मन में और भी कोई भी विचार प्रवेश नहीं कर सकता है, मैं केवल एकाग्रता से एक ही विचार लेकर यहाँ बैठी हुई हूँ। तो बार बार उसको बनाता है वो, ऐसे मैं ऐसा हूँ, मैं त्रिलोक विजयी रावण हूँ, मैं देवताओं को परास्त कर चुका हूँ, मैंने ये किया है, सभी महाभूतों पर मैंने विजय प्राप्त किया है, मेरे पास ये अस्त्र है, वो अस्त्र है, इसलिए अपना थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग करता है वो। लेकिन वेदवती का चित्त वो बहका नहीं सकता है। फिर साम यानी कि काउंसलिंग और अच्छे विचार, अच्छे आचार फेल हो गया ना, फिर दाम, फिर कोई प्रलोभन दिया, मेरी रानी बनोगी, मैं ऐसा बनूंगा, ऐसा आपको करूंगा, फिर दंड पे आ गया हूँ जबरदस्ती। जाके उसको उठाकर ले जाने के लिए उसने जब छुआ उसको, तो वेदवती इतनी क्रोधित हो गई, तुरंत उसको शाप दे दिया कि तुमने मेरे इस पवित्र तपस्या से पुनीत किए हुए शरीर को स्पर्श करके, अपनी गलत विषैली काम वासना के साथ स्पर्श करके दूषित किया हुआ है, अब मैं इस शरीर में नहीं रह सकती, अब मैं अग्नि मंत्र को उच्चारण करके अपने आप को भस्म कर दूंगी, लेकिन तुम्हारा जन्म लूंगी और तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी, अब तो मैं नहीं जीऊंगी क्योंकि आपने मेरे शरीर को भ्रष्ट कर दिया है। और ये सब इतने फास्ट होता है कि वो एकदम दंग रह जाता है, और अचानक वो मंत्र कहकर अपने आप को भस्म करके राख हो जाती है वहां पर, नथिंग इज देयर, नो ब्यूटीफुल बॉडी, केवल राख। लेकिन राख होने के बाद भी आवाज तो गूंजती रहती है, मैं दोबारा आऊंगी और तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। बड़ा उदास होता है रावण, तो ठीक है, फिर रथ पे बैठकर आगे चला जाता है। आगे जाता है तो देवताओं के ऊपर से उड़ रहा है वो, तो अचानक मंदाकिनी नदी में एक सुंदर युवती स्नान कर रही है, उसका नाम रंभा है, और वो कुबेर का पुत्र जो नल कुबेर है उसकी पत्नी है, वो स्नान कर रही है। हमारे महाराज फिर वहां भी उतरते हैं और उस पर बलात्कार करते हैं। वो चीखती हुई भाग भाग के अपने पिता पति के पास जाती है और कहती है ऐसा ऐसा हुआ, तो वो शस्त्र लेकर बाहर निकलते हैं और देखते सामने रावण खड़ा है, तो वो डर जाता है, जानता है कि मेरे पिताजी को परास्त करके आ रहा है वो, इतने बलाढ्य योद्धा को, तो मैं क्या टिक पाऊंगा। तो वहीं खड़े होकर अपने जनेऊ को अपने अंगूठे में मोड़कर शाप देता है, इसके आगे जब तुम किसी भी कन्या को उसके मर्जी के खिलाफ स्पर्श करोगे भोग लेने के लिए, तो तुरंत मर जाओगे। रावण फिर एक धक्का खाता है, अरे चलो कोई बात नहीं, मैं इतना विद्वान हूँ, इतने अच्छे कुल का हूँ, इतना बड़ा प्रभावी हूँ, इतना बड़ा योद्धा हूँ, इतना श्रीमंत हूँ, इतना अमीर हूँ, इतनी प्रॉपर्टी है मेरे पास, इतना क्या क्या नहीं है मेरे पास, मैं उसी प्रभाव से औरतों को वश करते रहूंगा, मुझे जबरदस्ती करने की जरूरत ही क्या है। क्योंकि इसका इतिहास ऐसा था कि रावण ने हजारों स्त्रियों को कभी समझा बुझा कर, कभी बहला कर, कभी कुछ करके प्रलोभन देकर मनाता था उनको, और वो था ही इतना बलशाली, इतना विद्वान, उसका वंश इतना विश्रवा ऋषि का उनका वंश है, विश्रवा मुनि का पुत्र है, वो ब्राह्मण है, हर तरह से योग्य था वो, लेकिन प्रवृत्ति राक्षसी। तो विश्व के कई देशों के लोगों की कन्या उस पर मोहित होती थी खुद भी, और उनकी पत्नी बनकर उनके अंतपुर में रहती थी, मंदोदरी पटरानी और बाकी सारे हजारों रानियां। तो ऐसे बहुत सारे शाप और पाप से रावण का जीवन जो है भरा हुआ था, और वहीं पर वो पृथ्वी में एक रूप हो जाती है राख के रूप में। तो जब जनक महाराज एक बार अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उस यज्ञ को करने के लिए खुद नांगर चलाना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है जमीन को तैयार करने के लिए। तब वो जमीन को जब ही चला रहे थे, नांगर चला रहे थे भूमि पर, तो जमीन के एक गैप में इस सुंदर कन्या का लाभ हुआ, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। सीता का मतलब जमीन पे जो होता है छेद, उसको गैप कह सकते हैं, उसको साइनस जैसे कहते हैं ना हम लोग इंग्लिश में, मेडिकल लैंग्वेज में। तो ऐसे भूमि पर जो छोटा छेद था वो उसको हल चलाते हुए वो उनको सुंदर कन्या प्राप्त हुई। और फिर उसको आकाशवाणी हुई कि ये जो सीता देवी जो आपकी पुत्री के रूप में आपको प्राप्त हो रही है, ये बड़ी सती है, तीन महासतियों की में से एक है। इनकी माताएं भी महासतियां थी जो कुछ शाप प्राप्त करके पृथ्वी पर जन्म लिया था उन्होंने। तो एक सीता की माता बनी और एक राधा की माता बनी और एक सीता राधा रानी और एक पार्वती की माता बनी। एक पार्वती की माता सुनैना, एक सीता की माता नैना और एक राधा की माता कीर्तिदा देवी। ये तीन वो महासतियां थी जो जन्म लेकर इन तीन महासतियों को जन्म देती हैं। इस तरह से आप ले जाइए, इनको थोड़ा गौरव सुनाते हैं और कहिए आपकी पुत्री के रूप में इसको स्वीकार कीजिए। जनक महाराज तो बहुत वृद्ध अवस्था में थे उस समय। तो जैसे ही ये कन्या बड़ी होने लगती है तो जनक महाराज को अपने पूर्वजों की ओर से ये धनुष तो प्राप्त हुआ ही था ना। तो एक दिन वो क्या देखते हैं सीन, मैंने आपको इतिहास पर क्यों बताया कि हम लोग उस धनुष पे आके रुके थे, है ना। अगर आप सतर्क रहेंगे तो पूरा आपको लिंक लगेगा मैं कहां से कहां घुमा रहा हूं आपको। तो ये छोटी सी कन्या जो 5 साल की थी वो इस 1 लाख भार वाले शिव धनुष को ऐसे उठा रही थी जैसे कोई खिलौना उठाता है बच्चा, बाएं हाथ से उठा रही है, फिर दाएं हाथ से उठा रही है, फिर उसको उड़ा रही है हवा में, फिर घुमा रही है, फिर ऐसा देख वो दशरथ, वो जनक महाराज देख के दंग रह जाते हैं, बाप रे इतनी शक्ति, इतनी कोमलांगी छोटी सी कन्या के पास। तो एक पिता को टेंशन क्या आता है हर चीज किसी, कभी भी बताओ आप, जब कोई कन्या का पिता होता है उसको टेंशन क्या होता है, लड़का कहां से लाऊं इसको योग्य इसके, इसके हाथ में 300 महान मल्ल योद्धा जिस धनुष को उठाने में उनके दम निकल जाते हैं, पसीना छूट जाता है, उसको ये कन्या 5 वर्ष की आयु में कोमल अंग, उसके अंग इतने कोमल है तो वो खिलौने की तरह उठा रही है, तो उसका पति कैसे होना चाहिए। तो वो नारद मुनि से या वशिष्ठ मुनि से नहीं, उनके गुरु से चर्चा करते हैं कि क्या करें अभी। तो कहते हैं कि ऐसा प्रण बना दो जो इस धनुष को उठाएगा एक हाथ से और प्रत्यंच चढ़ाकर उसको खींचेगा वही उसका पति बन सकता है। बोले ये आइडिया अच्छा है, इससे मतलब वही आदमी बाहर निकलेगा जो इसके योग्य होगा, नहीं तो फिर वो कैसे होगा। तो ऐलान कर देते हैं, अभी पुराने जमाने में 6 साल की लड़की हो गई तो फिर वो स्वयंवर को अनाउंसमेंट कर देते थे और 6-7-8 साल में शादी हो जाती थी। पुत्रों की आयु जब भी गुरुकुल से लौट के आए 12 साल में तो पुत्र भी विवाह उपवर हो जाते थे, उपवधु हो जाते थे, शादी के लिए योग्य हो। तो इनका जब ऐलान होता है तो सीता देवी का सौंदर्य इतना अद्भुत था कि देश विदेश के राजकुमार आते हैं उसके अंदर और वो किसी से भी वो धनुष हिलता भी नहीं है, कोई उसको टस से मस नहीं कर सकता है। तो वो इतने राजकुमार हो गए, सैकड़ों राजकुमार हो गए, तभी समझो अभी आप गए और आप उसको उठा नहीं पाए, शर्मिंदा हो गए, चले गए, फिर आप भी गए, आप भी शर्मिंदा हो गए, तो कभी आप मिले तो बताएंगे अरे मैं भी गया था, अच्छा तू भी गया था, तो मैं भी गया था, अच्छा फिर और कोई मिलेंगे और मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे हो गए ना। तो उनको सबको जब उनकी मुलाकात हुई तो ऐसा एक भाव बन गया कि दशरथ महाराज ने हमारा मजाक और अपमान करने के लिए प्रण रखा है, उनको तो विवाह करना ही नहीं अपनी कन्या का, लेकिन केवल हमको शर्मिंदा करने के लिए, अपमानित करने के लिए ऐसा प्रण रखा है जो किसी के द्वारा पूरा नहीं हो सकता है, चलो उनका हम बदला लेंगे। और सभी राजा राजकुमार जो है सेना को लेकर आक्रमण करते हैं अयोध्या के ऊपर। और ऐसे कहा गया है कि उस समय का 100 साल तक, 1000 के 100 साल, बहुत लंबी आयु तक, लंबा समय तक दशरथ महाराज को युद्ध में बिजी रहे इन लोगों के साथ में, क्योंकि आज आप आ रहे हो, कल आप आ रहे हो, कल और चार आ रहे हैं, कल चार आ रहे हैं, सब लोग उसी अपमानित भाव में है कि आपने हमारा अपमान किया है, ऐसा प्रण रख के करके सब लोग युद्ध कर रहे हैं। फिर बहुत समय के बाद में युद्ध समाप्त होता है, फिर उसके बाद में प्रभु रामचंद्र को लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र मुनि वहां पहुंच जाते हैं और प्रभु को आदेश करते हैं आपको इस धनुष को उठाना है और सीता देवी से विवाह करना है। तो प्रभु रामचंद्र विश्वामित्र मुनि से इस धनुष का इतिहास सुनते हैं और इतिहास सुनने के बाद में सबसे पहले उस धनुष को दंडवत प्रणाम करते हैं। इसके पहले किसी भी योद्धा ने उस धनुष को प्रणाम नहीं किया था, इतना गर्व था उनके अंदर, ऐसे ही जाके अपना वीर की वीरता की गर्व होने पर ये उनका गर्व था कि हम तो ऐसे ही उठा लेंगे उसको, लेकिन कोई उठा नहीं पाया उनको। ये पहला योद्धा था, बालक क्षत्रिय बालक, दंडवत प्रणाम किया, प्रदक्षिणा किया, वंदन किया, प्रार्थना करने के पश्चात फिर गुरु जी का आदेश लिया, फिर विश्वामित्र को प्रणाम किया और फिर अपने बाएं हाथ से एक ही झटके से उसको उठाया। ऐसा कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने उसको उठाया तो इतनी बड़ी गर्जना उस धनुष के उठाने की हुई, उसके बाद में उन्होंने सबके आंखों की पलके लगने के पहले ही प्रत्यंचा उठाई और उसको जोड़ दिया और उसको इतना खींचा कि एक गोल सर्कल तैयार हो गया, इतना उसको खींचा और फिर छोड़ दिया। जब वो भयंकर टनटनकार की ध्वनि प्रत्यंचा छोड़ने पर आई, उसके आवाज की वजह से दशरथ, विश्वामित्र मुनि, राम, लक्ष्मण और सीता, ये पांच लोगों के अलावा पूरे ब्रह्मांड में सब लोग बेहोश हो गए। सब देवता लोगों में सभी देवता देवियां, पृथ्वी लोक में सभी राजा और सभी राजकुमार, सभी लोग, पाताल लोक के सभी निवासी जो है सब लोग बेहोश हो गए। यथावकाश सब लोग होश में आए, लेकिन जनक राजा को बताया मैंने, जनक राजा, राम लक्ष्मण, विश्वामित्र और सीता, ये बेहोश नहीं हुए। फिर यथावकाश प्रभु रामचंद्र को सीता ने वरमाला पहनाई, फिर दशरथ महाराज को खबर दी गई और दशरथ महाराज फिर तुरंत लाखों लाखों गायों को लेकर जनकपुरी में आए, फिर सेना के साथ पूरा द्रव्य लेकर आए और ब्राह्मणों को लाखों 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 गायें उन्होंने दान में दे दी। जनक महाराज ने बड़ी धूमधाम से जनकपुरी में मिथिला नगरी में उनका विवाह रचाया और उस समय विश्वामित्र मुनि के आदेश के अनुसार तो चार भाई ना, सब लोग आ गए ना उधर, तो उन्होंने कहा ये सब लोग विवाह के योग्य हैं, तो जनक महाराज की और एक पत्नी के द्वारा और एक कन्या, उसका नाम उर्मिला देवी था, उसका विवाह लक्ष्मण के साथ तय किया गया। फिर दशरथ जनक राजा के और एक मित्र थे, भाई जैसे थे, कुशध्वज नाम है उनका, उनको दो कन्याएं थी, उनका नाम मुझे याद नहीं, श्रुतकीर्ति और
मांडवी,
दो कन्या थी, उनका विवाह भरत और शत्रुघ्न से तय हुआ और चारों लोगों का विवाह वहां पर संपन्न हुआ। और फिर वो धनुष जो उन्होंने उठाया था उसको लेकर फिर वो अयोध्या नगरी जब चले तो कुछ ऐसा चिन्ह नजर आए वातावरण में कि अशुभता की, हाँ, कुछ बाया शरीर फड़फड़ा रहा है पुरुषों का और कुछ घुबड़ जो क्या बोलते हैं उल्लू आवाज कर रहे हैं, उनका दर्शन हो रहा है, साथ साथ में कुछ हिरण जा रहे हैं लेफ्ट साइड में से। तो दशरथ को चिंता होती है, वशिष्ठ मुनि को पूछते हैं क्या है सब, ये तो खराब लक्षण दिखाई पड़ रहे, अशुभता दिखाई पड़ रही है। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि ये सब अशुभ लक्षण तो है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हिरण भी जा रहे हैं लेफ्ट साइड में से, तो ये कुछ ऐसा संकट आएगा तो कुछ समय के लिए टिकेगा और फिर सब शुभ हो जाएगा। तो अचानक बहुत बड़ी गर्जना सुनाई पड़ती है, परशुराम जी महाराज उस धनुष की तनत्कार सुन के, मंदा महेंद्र पर्वत में तपस्या कर रहे थे, उनका तपस्या भंग हो गया, वो क्रोधित हो गए, किसका इतना दुस्साहस जो मेरे पृथ्वी पर होते हुए शिव धनुष की तनत्कार की गर्जना कर रहे हैं। तो वो आते हैं और कहते हैं कि तू वो बालक है जिसे वो धनुष उठाया था, अरे वो तो देवासुर संग्राम में जब विष्णु का शिव जी का संघार युद्ध हुआ था तब विष्णु ने एक हुंकार किया था हूं करके, उस हुंकार से ये धनुष शिथिल हो गया था, तो आपने जिसको उठाया है वो शिथिल धनुष है शिव जी का, शिव जी का पूरा ऊर्जा पूर्ण धनुष नहीं है वो, इट्स लाइक डिस्चार्ज्ड मोबाइल, वो पूरा चार्ज में नहीं है अभी। विष्णु के हुंकार से वो शिथिल हो गया हुआ धनुष आपने उठाया है। अगर आप वो सही बलशाली योद्धा हो तो मेरे पास विष्णु का धनुष है जो विष्णु ने मुझे दिया है, वो विष्णु ने विष्णु शिव के युद्ध में उपयोग किया था। अगर आपको अपने बल में इतना घमंड है, लो इसको उठाओ, तो प्रभु रामचंद्र ने फिर अपनी नम्रता दिखाई। विद्या विनयन संपन्न, हाँ जैसे विद्या होती है वैसे बल भी, जब बल होता है और नम्रता होती है तो फिर वो बल जो है बहुत गौरवशाली होता है। अभी भगवान तो भगवान ही है, तो बालक रूप में है तो क्या हुआ, वो जानते हैं परशुराम ये मेरे ही अवतार है और मैं इनके अवतार का उगम हूँ, सब जानते हैं वो, लेकिन वो बालक के रूप में लीला कर रहे हैं, हाथ जोड़कर वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो मैं उसको पूरी करूंगा, और गौरव करते हैं उनका, उनके क्रोधपूर्ण अपमानजनक वचनों से वो प्रभावित नहीं होते और सबके सामने उसको विष्णु के धनुष को उठाते हैं। जैसे उस धनुष को उठाते हैं परशुराम को उस वाणी की याद आती है जो उनको बताया गया होता है कि जब तुम्हारा गर्व हरण कोई करेगा वही परम भगवान विष्णु होंगे, और तब तुम हमारा जिस जो कार्य के लिए पृथ्वी पर गए थे वो पूर्णता उससे निवृत्त होकर तपस्या में लग जाना, फिर क्षत्रियों का संहार करने के लिए आप गए थे तो आपको उसको रोक देना है। तो जब ये विष्णु धनुष उठाते हैं प्रभु रामचंद्र तो तुरंत उनके चेहरे में उनको विष्णु का दर्शन होता है, चतुर्भुज नारायण का दर्शन होता है, तो वो स्वयं नतमस्तक हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, गौरव करते हैं, बोलते आप ही संभालो अभी ये विष्णु धनुष और अपनी लीलाओं को संपन्न करो। और एक बात उनको ध्यान में आती है, उनको क्षत्रियों से पहले चिड़ी थी और क्षत्रिय बालक ने उसको उठाया था, लेकिन उनको अवतार होने के पहले बताया गया था कि जब किसी क्षत्रिय के सामने आप जाओगे और खुद को निस्तेज पाओगे, कभी होता है ना अगलित कातर हो जाते हैं किसी को देख के एकदम ऐसा होता है कि अभी हमारे अंदर शक्ति नहीं बची कुछ, जब आप किसी क्षत्रिय को देखकर अपने आप को एकदम गलित गात्र अनुभव करोगे, एकदम बलहीन शक्तिहीन समझोगे, मतलब अनुभव करोगे, तब समझ लेना कि आपका अवतार कार्य समाप्त हो गया है। तो जब वो ललकार ललकार कर राम जी से संभाषण कर रहे हैं लेकिन उनको अनुभूति हो रही है कि मेरा शक्ति शक्ति जो है वो क्षीण हो रही है, मानो ये बालक से मैं बात कर रहा हूं वो सारी शक्ति उसमें प्रवेश कर रही है मेरी और मैं शक्तिहीन बलहीन हो गया हूं। तभी उनको अंदाजा आ गया था, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव ही ऐसा था, अवतार के अनुसार कार्य के अनुसार बहुत उनको क्रोध आता था। तो जब शिव धनुष को उठाया तो समझ गए कि यही तो हमारे भगवान है। फिर उनको धनुष को सौंप कर फिर भरत वापस चले जाते हैं महेंद्र पर्वत पर, और यथावकाश प्रभु रामचंद्र विजयी होकर, हाँ थोड़ी बहुत अशुभता यानी थोड़ी बहुत कमोशन टेंशन को पार करके पूरी तरह से पवित्रता और शुभता को प्राप्त करके फिर वो अयोध्या लौटते हैं। बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत होता है और सब लोग उत्सव मनाते हैं उनका विवाह के उपलक्ष्य में, युवराज के रूप में प्रभु रामचंद्र को घोषित किया जाता है। ऐसे कहते हैं कि 100 साल तक प्रभु रामचंद्र युवराज के रूप में रहे और फिर कुशध्वज को दो कन्याएं थी, पुत्र नहीं था, तो बीच बीच में दशरथ महाराज भरत और शत्रुघ्न को कुशध्वज के राज्य में हेल्प करने के लिए भेजते थे, शासन करने के लिए ना, बिकॉज अभी दो ही हमारे जमाई हैं जो पुत्र जैसे हैं, पुत्र तो है नहीं, तो उनको राज्य को चलाने के लिए दशरथ महाराज की ओर से भरत शत्रुघ्न हमेशा जाया करते थे और 6-6 महीना रहकर फिर दोबारा लौट के आते थे, फिर जाते थे। तो एक दिन भरत जी शत्रुघ्न जी चले गए थे अपने ससुराल ससुर जी को हेल्प करने के लिए। यहाँ पर दशरथ महाराज को लगता है कि अभी मुझे संन्यास लेना चाहिए, वानप्रस्थ लेकर जाना चाहिए, अभी योग्य समय है, प्रभु मतलब मेरा पुत्र राम इतना गौरव है, इतनी प्रजा उसको चाहती है, इतने अच्छे गुण है उसके अंदर, राजा बनने के योग्य है, और मुझे भी अभी बहुत देर तक राज्य में लिपट कर रहना नहीं चाहिए। तुरंत वशिष्ठ मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि हाँ अच्छा मौसम है, अच्छा मुहूर्त है, तुरंत तैयारी करो और इनका राज्याभिषेक कर देते हैं। राज्याभिषेक कल होने ही वाला है, पूरी अयोध्या जो है वो खुशियां मना रही है कि हमारा प्रिय राम राजा बनेगा। हाँ कोई इनको पैसे नहीं बांटे थे राम जी ने कि आप मेरे लिए वोट देना, प्रेम से, हृदय से उनको स्वीकार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कब हमारा राम राजा बनेगा, अयोध्या वासी इतने प्रेम से। तो सब यज्ञ हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, वेद मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं, शाही पवित्र स्नान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और कल राजाभिषेक होने वाला है। उस समय मंथरा देवी जो है क्रोधित होकर कैकेयी के भवन में प्रवेश करती है। कैकेयी जो है वो प्रभु रामचंद्र पर इतना प्रेम करती थी, वो इतनी खुश थी कि विशेष रूप में कैकेयी का प्रभु पर प्रेम था। तो मंथरा भ्रष्ट होकर उसकी मति भ्रष्ट होती है। उसका ऐसे आचार्य बताते हैं कि प्रभु रामचंद्र थोड़ा बहुत जंगल में गए, थोड़ा बहुत राक्षस को मार लिया, और अभी सीता जी का प्राप्ति किया, विवाह करके अभी राजा बन रहे हैं, अभी प्रजा उनकी इतना प्रेम करती है, राज्य उनका बहुत बढ़िया चलेगा, कोई संकट नहीं आएगा, तो उसको कौन मारेगा। जिसके आतंक की वजह से त्रस्त होकर भूमि देवी ब्रह्मा जी के नेतृत्व में विष्णु के पास गई थी और वरदान मांगा था उनसे, तब प्रभु ने कहा था कि हम आएंगे और इस रावण का और उसके द्वारा जितने राक्षस पैदा हुए सबका नाश करेंगे, वो कब होगा? बोले नाटक में वो अंक कभी आएगा? बहुत सारे अंक तो अच्छे अच्छे हो रहे हैं, प्रवेश, वो प्रवेश कब होगा? अब यूं ही चलता रहेगा तो फिर ये रावण रहेगा वैसे ही, हमारा आतंक चलता रहेगा जो हम भोग रहे हैं। तो फिर वो मंथरा की मति को भ्रष्ट कर देते हैं अपनी शक्ति से, और मंथरा भागती भागती कैकेयी के भवन में जाती है। तब कैकेयी जो है श्रृंगार कर रही है कि मेरे प्रिय पुत्र राम, जिससे वो भरत से अधिक चाहती थी, उसका राज्याभिषेक होगा, इसलिए वो सबसे बेस्ट श्रृंगार करने में लगी हुई है। जैसे मंथरा आती है वो कुब्जा थी, वो मतलब झुकी हुई थी, वो आती है तो उसको तुरंत एक गले का बहुत कीमती हार निकाल के देती है, ले मंथरा बुढ़िया तू भी आज सज जा, मेरे पुत्र का राज्याभिषेक हो रहा है। तो हमेशा ऐसे हार प्राप्त होने पर दासियों को बहुत खुशी होती है, लेकिन इस समय वो इतना कीमती रत्नों का हार उठाकर जमीन पर फेंकती है। तो मूर्ख कैकेयी, वो बुढ़ी भी थी, तो कभी कभी दासियां बहुत उम्र वाली होती है और राजकन्याएं बालिका होती है, उनको गोद में खिलाते हैं, तो उनको संबोधन भी ऐसा करती है, बोला मूर्ख कैकेयी तुम जानती नहीं हो तुम्हारा सर्वनाश होने वाला है, तुम खुशियां मना रही हो लेकिन तुम दासी बनने की खुशियां मना रही हो कि दासी बनने जा रही हो, तो क्या बक रही हो बुढ़िया, ये बड़ा षड्यंत्र है, तुम नहीं समझ सकती हो, तुम तो बहुत ऐसे क्या कहते हैं उसको, इनोसेंट, क्या कहते हैं, निष्पाप हृदय की हो। षड्यंत्र ऐसा है कि राजा राम को बनाएंगे तो राजमाता कौन बनेगी? कौशल्या देवी, तुम उसकी दासी बनकर रहोगी, तो सम्मान तो राजमाता का होता है, तुम्हारा बेटा भी दास बनेगा और तुम खुशियां मना रही हो, तो मूर्ख औरत हो। तो मंत्रा ऐसी बेफजूल की अशुभ बातें मत किया करो, इसमें कोई राजमाता कोई दासी वासी कुछ नहीं, हम सब लोग बहने हैं। इसकी मति इतनी शुद्ध थी तो बहुत विरोध करती थी उसकी बातों का, मंत्रा लगी रही। फिर क्या हुआ? बुरे संग को यथा समय यथोचित समय पर ही त्याग करना चाहिए, ज्यादा देर बुरे संगत में नहीं रहना चाहिए, ये समझ करके मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं इस बुरी संगत के प्रभाव से प्रभावित नहीं होऊंगा, मैं इतना पावरफुल हूं, ये सोचना नहीं चाहिए कभी। जब पता चलता है कि बुरी संगत हो रही है अभी, तुरंत कितना भी बलशाली होने पर भी वहां से जगह छोड़कर त्याग करना चाहिए, या तो बुरी संगत को छोड़ना चाहिए। लेकिन मंत्रा लगी रही और कैके भी वहां पर आईने के सामने बैठी रही और दोनों का वाद विवाद और चर्चा चलती रही, और धीरे 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 मंत्रा का प्रभाव कैके के मति पर हुआ, और कैके भी एकदम सोचने लगे कि ये बात तो सही कर रही है। तो पूरी तरह से प्रभावित होने के बाद में कैके जैसे मानो अर्जुन ने कैसा, शिष्यस्ते हम स्यादि माम ताम प्रपन्नम, अभी मैं आपका शिष्य हूं, मित्र वित्र नहीं हूं, आप मेरे गुरु हो, अब मुझे आप उपदेश करो, ऐसे ही भाषा में बोलते हैं, अभी तुम बताओ क्या करना है। तो कहती है, तुझे याद है एक बार दशरथ महाराज युद्ध में गए थे और युद्ध रणांगण में बेहोश हो गए थे, बेशुद्ध हो गए थे, तब तुम वीर क्षत्राणी के रूप में उनके सारथ्य कर रही थी, बड़ी कुशलता से तुमने उसका रथ शत्रु के सामने से निकाल कर उसको तंबू में लेके आई थी तू, और खारे जख्मों को इलाज करके शुश्रूषा करके उसको होश में लाया था। तब प्रसन्न होकर दशरथ महाराज ने कहा था, वर मांगो रानी, वर मांगो, दो वर हम आपको देंगे। तब आपने कहा था कि अभी नहीं, योग्य समय पर उसको मांगेंगे। कैकेयी, वो दो वर मांगने का समय अभी आ गया है। तो सी वो तो भक्त थी बेचारी, उसको सभी षड्यंत्र वगैरह सब पता नहीं है कैसे करना है, वो दंग रहते। अच्छा क्या मांगना है मुझे, ये भी पूछती। तो पहला वर तो मांग ले कि मेरा पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। नहीं नहीं, वो तो प्रभु रामचंद्र उसके लिए योग्य है, मेरा राम जो है उसके लिए योग्य है, वो तो छोटा भाई है उसका, वो तो उसको अपने आप को दास मानता है उसका, अपनी सेवा करता है उसका। नहीं, पहले वर के रूप में मेरे भरत को राजा बनाए, ऐसे वर मांग लो। दूसरा वर क्या मांगू, राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए। तो वो धक्का लगता है उसको सुनकर, इसकी क्या जरूरत है, मेरा पुत्र राजा बन गया ना। अरे मूर्ख कहके, तुम नहीं जानती कि ये राम इतना लोकप्रिय है कि लोग और राम दोनों मिलकर भरत को और दशरथ को और सबको मजबूर करेंगे तो राजा होना तो ऐसा एक प्रसंग हो जाएगा और कब लोग भूल भी जाएंगे उसको। तो यथावकाश कुछ समय के बाद में सब जनता जो है उसके प्रभाव में आकर फिर दोबारा राजा बनेंगे राम, इसलिए उसका जंगल में जाना बहुत आवश्यक है। जब जंगल में रहेगा, कंदमूल खाएगा, तो राजनीति के अंदर दखल नहीं होगी उसकी। तब अबाधित रूप से भरत जो है वो अपना राज्य का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, उसको पूरी तरह स्थापित कर सकता है। फिर 14 साल के बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसका। तो कई कई उसको शौक लगता है सुनकर, लेकिन बात तो लगती है पता ही की है, हित की भी है। तो अभी क्या करूं, अभी डायरेक्शन, पहला प्लानिंग हो गया, योजना हो गई, फिर अभी नेतृत्व मतलब दिग्दर्शन हो रहा है। तो क्या करूं, अभी ये सब श्रृंगार उतारो, काले वस्त्र पहनो और कोप भवन में जाओ, सल्की चेंबर्स। उस जमाने में क्रोध व्यक्त करने के लिए एक अलग चेंबर हुआ करता था, अपना कैसा बाथरूम टॉयलेट अलग होता है ना, वैसा एक और एक चेंबर, कोप भवन, क्रोध भवन कहते हैं उसको। वहां पर जाकर जमीन पर लेटना बाई साइड पे और अश्रु बहाना, फिर मैं ये खबर फैलाऊंगी कि रानी क्रोध भवन में गई है, राम प्रभु राम के राज्याभिषेक की संध्या पर अचानक कई क्रोध भवन में चली गई, ये खबर फैल गई सब जगह। फिर ये दो वर को मांग लेना। दशरथ जी आते हैं, पूछते हैं, रानी क्या हुआ, तो खुशियों का समय है, अब कोप भवन में जाकर बैठी हो, क्या हुआ बताओ। तो रोती जा रही है, बोले पहले बहुत देर तक बोलना नहीं, पूरा बता दिया था कैसे कैसे करना है, कैसे दशरथ को पूरा भावनिक दृष्टि से पूरा शोषण करना है उसका, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन। दशरथ जी यहां से जाते हैं वहां से जाते हैं, वो रोती रहती है, बोल रानी बोल, क्या चाहिए तुझे, अरे जान भी अर्पण कर सकता हूं। अम्मे बोलती है, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, मुझे वो दो वर चाहिए। क्या चाहती हो बोलो, आप खाली बोलो, एक बार सोच लो, जो मैं वर मांगने जा रहे हूं उसको पूरा करोगे, अगर शंका है तो मैं पूछूंगी नहीं। नहीं नहीं, मैं तो जान देने के लिए भी तैयार हूं। तो फिर खड़ी हो जाती है, हमने वो ड्रामा किया था आपको याद है, भरत मिलाप का, उसमें वो बहुत दुष्ट कहके ऐसी खड़ी हो जाती है शैली नागिन की तरह, कहती है मेरा पहला वर यह है कि मेरा पुत्र भरत राजा हो। तो दशरथ जी कहते हैं, अरे भरत जी की भी ऐसी इच्छा नहीं होगी शायद, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, राम को बता दूंगा मैं। और मेरा दूसरा वर यह है कि तुम्हारा प्रिय पुत्र राम 14 साल के लिए वनवास जाएगा। ये सुनते ही जैसे ब्रह्मास्त्र हृदय पर चला हो, उसके आघात से दशरथ जी बेहोश हो जाते हैं। फिर उठते हैं, फिर सोचकर भी बेहोश हो जाते हैं, ऐसे कई बार बेहोश हो जाते हैं, गलित्र गात्र हो जाते हैं और बुरा भला कहते हैं कैकेयी को। तो कैकेयी बोलती है, मैंने कहा था पहले ही, अगर कष्ट हो तो बोल देना, मैं मांगूंगी नहीं वर, तुमने हाँ बोला। और आप लोग तो रघुकुल के लोग हो, आप तो कहते हैं कि प्राण जाए वचन न जाए, कहाँ गए तुम्हारा रघुकुल का रिवाज, इतना कष्ट हो रहा है बात ही सुनकर, वर पूरा करने का तो बात दूरी रही, सुनकर ही इतना कष्ट हो रहा है, मत करो पूरा वर वरदान में। लेकिन रघुकुल के तो वो थे ही, उनको तो पूरा करना ही था। तो फिर प्रभु रामचंद्र को बुलाओ भेजते हैं, बोले आपसे नहीं होगा तो मैं बुलाती हूँ उसको। तो वो आ जाते हैं अनुष्ठान में बैठे हुए, बीच में आ जाते हैं, माता क्या आदेश है मेरे लिए। देखते हैं प्रभु पिताजी जो है वो बेहोश से पड़े हैं, रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं, सोफा पर मतलब मंच पर पड़े हुए हैं। माता ऐसे क्रोध में खड़ी है, मंत्रा भी खड़ी है, सब लोग कांप रहे हैं, एकदम अशुभ वातावरण है। तो माता क्या आदेश है मेरे लिए? ये बोल नहीं पाएंगे, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे मुंह से सुन लो, मेरा भरत राजा बनेगा और तू 14 साल के लिए वलकल पहनकर वनवास जाएगा। तो क्या आपकी उम्मीद है प्रभु रामचंद्र ने कहा होगा? सरप्राइज, एंगर, हाँ क्रोध, नॉर्मल ना, ये नॉर्मल रिएक्शन। अरे कल तो राजा बनने वाला हो, कितने दिनों से उत्सव चल रहा है और आप मुझे आज वनवास भेज रहे हो, तो कितना शॉकिंग न्यूज है ये। वो क्या कहते हैं, मुझे ये बात रामायण में इतनी, मुझे जितनी बार मैं पढ़ता हूं उतना मुझे हर बार उसको रोमांच खड़े होते हैं, इतना अनुभव होता है कि अरे प्रभु क्या कहते हैं, बस इतनी सी बात। तो केवल आदेश भेज दिया होता दूत के साथ में, मैं वहीं से चला जाता, कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, क्यों ऐसा ये प्रश्न भी नहीं है। आपकी इच्छा है, आप मुझे यहां बुलाने के बदले में आदेश भेजते खाली किसी के द्वारा, मैं वहीं से चला जाता। भरत तो मेरा प्रिय भाई है, हर तरह से राजा बनने के योग्य है, मुझे कोई इतराज नहीं है, जंगल में आनंद से रहूंगा, हवा की तरह, अग्नि की तरह ये खबर अयोध्या में फैल जाती है। प्रभु रामचंद्र कुछ ही सेकंड के अंदर राज वस्त्रों को उतार कर खड़े हो जाते हैं और ये दुष्ट कह के मंत्रा के आदेश के अनुसार वलकल तैयार रखती है, ये आपको पहनना है। कितनी दुष्ट होगी वो, ऐसा नहीं कि जंगल में जाओ फिर खाल पैदा करो फिर पहनो, वलकल लाकर रेडी रखती है कि आपको पहनना है। फिर लंबी कहानी है, वो सीता जी मना करती है, मैं जाने को तैयार होती है और रामचंद्र मना करते हैं उनको, तो सीता जी उनको वास्ता देती है कि मैंने पिताजी के राज में ये वचन दिया था कि सुख में और दुख में आपके साथ रहूंगी, और आप कह रहे हैं आप महल में रहो, मेरे माता पिता का ख्याल रखो, और आप कंदमूल खाएंगे, मैं यहाँ पर पकवान खाऊंगी, मैं पिताजी को शर्मिंदा नहीं करूंगी, जनकपुर में जो मैंने वादा किया था, वचन लिया था, वो मैं निभाऊंगी, और जहां जहां भी आप रहेंगे, जहां जिस अवस्था में रहेंगे उसी तरह मैं रहूंगी। तो फिर प्रभु रामचंद्र की परीक्षा में सीता देवी पास हो जाती है और लक्ष्मण भी वैसे ही खड़े हैं, मतलब मैं तो जाऊंगा ही बाय डिफॉल्ट, कोई चर्चा का सवाल ही नहीं इसके अंदर। माता के पास आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, माता ये नहीं कह रही है अरे बेटा तुम जा रहे हो कैसे होगा, मत जाओ बेटा मत जाओ, छाप तो तुम्हें नहीं मिला है, तो वरदान उसके लिए मांगा था, ऐसे नहीं। वो कहती है मैं तब खुश रहूंगी जब तुम दिलो जान से प्रभु की रक्षा करोगे, और आदेश देती है उनको 14 साल आपको सोना नहीं है, दिन में कंदमूल लाकर जो भी खाने पीने की चीजें हैं उनकी पूरी सेवा करना, और रात को जगे रहना वीरासन के अंदर धनुष तान के, और पहरा देना ताकि प्रभु को अच्छी नींद मिले। माता का आदेश है, देखो कैसी माता है, कितनी वीर माता है वो, कितनी भक्त माता है। और फिर राम लक्ष्मण और सीता फाइनल आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं, तो ये कह के ही उनको वलकल देती है, जैसे कि कोई मानो कोई उपहार है, कोई ये आपको पहनना है उधर पिकनिक में। लेकिन मन ही मन वो खुश हो जाते हैं कि मैं वन में सब संतों का संग मिलेगा, और यहां से असली रामायण शुरू होता है। अब तक तो खुशी खुशी का मौसम था, प्रभु रामचंद्र निकल जाते हैं, सारे अयोध्यावासी अयोध्या छोड़कर प्रभु के पीछे निकल जाते हैं, और कई कई को ऐसे ताने मारते हैं, इतने बुरा भला कहते हैं, शाप देते हैं उसको, बड़े बूढ़े बच्चे औरतें सब लोग, बीमार जितने भी थे सब लोग निकल गए, बोलते हमारा यहाँ पर अयोध्या में काम ही क्या है, जिस अयोध्या में राम नहीं उस अयोध्या में रहकर करना क्या है, जहां राम होंगे वही अयोध्या है, चाहे जंगल में हो या वन में हो या शहर में हो, जहां वो रहेंगे वही अयोध्या है, और हमारी अयोध्या हम वही बसाएंगे जहां पर प्रभु राम रहेंगे, इस अयोध्या में जिसमें कैकेयी है उसमें हमको नहीं रहना है। तो जब निकलते हैं तो सुमंत को कहते हैं आर्य सुमंत जाके इनको छोड़ा आओ सरयू नदी की तरफ, तो सारा अयोध्या पीछे चल रहा है, उसको मना रहे हैं मत आओ मत आओ, फिर भी वो चाह रहे हैं हमको चलना है वही चलना है, ये सोचते नहीं कि खाएंगे क्या पिएंगे क्या रहेंगे किधर, बड़े बूढ़े सब चल रहे हैं, इतना प्रेम और त्याग प्रवृत्ति अपने प्रभु के लिए। फिर रात को प्रभु उठ जाते हैं, जब वो तंबू लगाते हैं नदी किनारे, तो बीच रात में लास्ट प्रहर में उठ जाते हैं, सुमंत को जगाते हैं, लक्ष्मण सीता को जगाते हैं, बोले हम यहीं से अभी चले जाते हैं तुरंत नाव लेकर नदी पार करके। ये लोग उठने के पहले, भोर के समय के पहले, पहले प्रहर के पहले ही हम चले जाते हैं, तब ये लोग चले जाएंगे फिर वापस। तो प्रभु उठकर चले जाते हैं, सुबह उठते लोग देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र तो है नहीं, अरे सुमंत वही बैठे हैं, रथ वही है, लेकिन प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण और सीता नहीं है, बाकी सब लोग हैं। छाती पीट कर आक्रोश करते हैं और दुखी होकर वापस चले जाते हैं। फिर प्रभु गुहा राजा को मिलते हैं, जंगल के राजा थे वो, निषाद राज गुहा, फिर उनके साथ लीला होती है बहुत सारा, फिर वो आगे चले जाते हैं। 13 साल तक चित्रकूट के जंगल में रहते हैं, प्रभु ने चित्रकूट में अपने काम किया है, बहुत पवित्र स्थान, और कामतगिरी है वहाँ पर, कितना कितना सुंदर सुंदर लीला स्थली है। और वो 13 साल उनके इतने सुंदर बीतते हैं संतों के संग में, उनके आदेश में, उनकी सेवा में, उनके श्रवण में, बहुत ही मधुर उनका जीवन चलता है। और फिर 13 साल होने के बाद में वहाँ से निकलने का प्लानिंग करते हैं, तो सभी ऋषि मुनि दुखी हो जाते हैं कि अरे ये साप वाप की वजह से हमारा तो लाभ हुआ ना, प्रभु का संग मिला, प्रभु सोच रहे हमें संतों का संग मिला, दोनों आनंद ले रहे हैं, जब चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है उनको, विरह में आते हैं वो सब। तो उस समय कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो आप पे ऐसा प्रेम हो गया है कि मानो पति पत्नी का जैसा प्रेम होता है, तो हमारी इच्छा कब पूरी होगी? तो प्रभु कहते हैं कि जब मैं अगले अवतार में आऊंगा तब मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। अरे प्रभु की इतनी लीला सुंदर सुंदर है, जब वो मिथिला गए थे विवाह करने के लिए, तो मिथिला की कन्या भी उनके लिए मोहित हो गई थी, उन्होंने भी उनके लिए पर्सनली रिक्वेस्ट किया था हमारी इच्छा कब पूरी होगी, तो उन्होंने कहा था अभी मैं एक पत्नी व्रता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तभी सब इच्छा पूरी करूंगा। तो मिथिला देश की कन्याएं, कौशल देश की कन्याएं जब माता के घर गए थे कौशल देश में, तो वहां की भी कन्याएं मोहित हो गई थी, जब विवाह होकर जब वापस लौट कर आए तो अयोध्या की कन्या भी अयोध्या वासिनी में मोहित हो गई थी, तो दंडक वन में गए तो ऋषि भी जो माधुर रस की परिसीमा को प्राप्त कर चुके थे वो भी मोहित हो गए हैं। सबको अगले जन्म का वादा करके प्रभु ने सारे वादे पूरे किए हैं। आप गर्ग संहिता पढ़ेंगे तो ऐसे अनंत कन्याओं का वर्णन दिया है जो अलग अलग स्थिति में भगवान से मोहित हो गए थे। तो मत्स्य अवतार में आए थे समुद्र कन्या ही मोहित हो गई थी, जब वराह अवतार में आए थे, जब कुर्म अवतार में आए थे, तो हर समय प्रभु के अवतार में उनकी भक्ता हैं, भक्तिन हैं, तो सब लोग मोहित हो गए थे। तो उनको सबका उन्होंने कृष्ण अवतार में सब लोगों को अलग 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 गोपियों के युथों में उनको जन्म दिया है और उनकी इच्छाओं को पूरा किया है। इस तरह से दंडक वन में आते हैं तो अभी हमारी जहाँ कथा शुरू हुई थी वहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं, एक तरह से हमारी कथा अभी आरंभ हो रही है। उसके बीच में थोड़ा भगवान का नाम पुकारेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगस्त मुनि उन्हें एक दो बाण के तोणीर, एक तलवार और एक शायद धनुष उनको भेंट देते हैं और उनको कहते हैं कि गोदावरी किनारे में आपके लिए बहुत सुंदर स्थान है, गोदावरी किनारे बहुत सुंदर स्थान है और वहां पर आप रहना और अपना एक साल बिताना, थोड़ा सा उस तरफ बस। तो जब वो अगस्त्य मुनि के आश्रम से जहां पर हम लोग रहते हैं पंचवटी क्षेत्र वहां जाने को निकलते हैं, तो उस समय दोबारा जटायु जी वहां प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वे इस दंडक वन के राजा है ना वो, और वो बैठे रहते हैं वहां पर जब तक अगस्त्य मुनि का संवाद हो रहा है, एक ऋषि का संग भगवान ले रहे हैं, उनका आदेश सुन रहे हैं, उनका मुख से उपदेश सुन रहे हैं। तो वो जब निकलते हैं वहां से तो दोबारा जटायु अपने पंखों को फैलाकर अपने पंखों की छाया में प्रभु रामचंद्र को पूरा यहां से लेकर कहां तक पहुंचाते हैं, पंचवटी तक। उनको कहते हैं कि यहाँ पर बहुत राक्षस रहते हैं, हाँ बहुत राक्षसों का निवास है यहाँ पर, तो आपको जब भी कुछ संकट का समय आएगा तो मुझे आप पुकार लेना, मैं आपकी रक्षा करूँगा, मैं यहाँ का राजा हूँ, ये वन मेरा है और आप मेरे वन में बहुत आनंद से रहिए और आप जब भी जरूरत पड़ेगी मुझे पुकारिए। तो वात्सल्य भाव था उनका, प्रभु उनको तात पुकारते थे, तात के रूप में। तो यहाँ पर जटायु का संबंध आया है। फिर आप जानते हैं लक्ष्मण ने गोदावरी के किनारे पेड़ के पत्तों को निकालकर पर्णकुटी बनाई। वो पर्णकुटी इतनी विशाल थी कि उसका एक एंड तपोवन में है, बीच में सीतारण की जगह है और एक जगह पर कालाराम का मंदिर है, और सब मिलकर वो पर्णकुटी है, क्योंकि शूर्पणखा का जो नाक काटा गया वो तो पर्णकुटी के सामने ही किया ना उसको। सीतारण भी उसके घर से ही हुआ है और रहते भी अपने घर में ही थे, और आज की स्थिति में कलयुग में तीन स्थान तीन जगह पर है और कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। लॉजिकली ये हम समझ सकते हैं कि ये सब मिलकर एक घर था, पर्णकुटी लक्ष्मण ने बनाई थी, अपने हाथ से बनाई थी उन्होंने। और वो घर बनाने के पश्चात फिर जंगल गए, फिर कंदमूल फल फूल जलवल सब लेके आए, फिर प्रभु को बोला आप नदी में स्नान करो, नदी में स्नान किया, फिर उनको फल फूल खिलाया, फिर पर्णशैया बनाई सोने के लिए, फिर चरण दबाए, फिर प्रभु सो गए, तो ये कुटी के बाहर आकर वीरासन में बैठे हुए धनुष लेकर। कितना त्याग किया लक्ष्मण जी ने। इसकी छोटी सी एक कहानी आती है कि 14 साल के वनवास के बाद रावण का वध करके सब वानरों को लेकर फिर दोबारा जब राम भगवान पहुंच जाते हैं तो दरबार होता है, राम जी का अभिषेक होता है, राज्याभिषेक, राम जी राजा बन जाते हैं। फिर बोलते हैं ना फर्स्ट अधिवेशन मंत्रियों का शुरू होता है, तो उसमें लक्ष्मण जी जमाई दे रहे हैं, तो जनता देख रही है अरे इतनी बड़ी सभा चल रही है प्रभु रामचंद्र की और राम जी के भाई जमाई दे रहे हैं, ये कोई एटिकेट है क्या? तो प्रभु रामचंद्र समझ जाते हैं कि लोगों के मन में क्या विकार चल रहा है, और कहते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको पता नहीं है 14 साल मेरे अनुज भ्राता लक्ष्मण ने रात को निद्रा नहीं लिया है, आज वो देख रहे हैं कि मैं सुरक्षित रूप में अयोध्या लौट के आया हूं, तब उन्हें अभी नींद आ रही है, अभी नींद के ग्रहण करने के लिए वो योग्य स्थिति में है ऐसा उनको लग रहा है। 14 साल में उन्हें जमाई भी नहीं लिया कभी नींद की वजह से, इतने सतर्क रहते थे वो, अलर्ट। लोगों के मन के अंदर जो वैष्णव अपराध होने वाला था उसको प्रभु ने ज्ञान देकर बचाया। एनीवे सो हमारी कथा कहाँ थी, तो प्रभु रामचंद्र रह रहे वहां पर, तो एक दिन अचानक शूर्पणखा वहां पर आती है और शूर्पणखा देखती है इतना सुंदर युवक, इतना सुंदर जिसका हजारों काम देव भी उसके सौंदर्य की तुलना नहीं कर सकते हैं, और वो जटा धारण करके पेड़ की खाल पहनकर जंगल में रह रहे हैं। वो तो वहां पर मनुष्यों को खाने के लिए, प्राणियों को मनुष्यों को खाने के लिए आती थी, लेकिन इसको देखकर मोहित हो जाती है, सीधे आती है प्रपोज करती है कि मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। और वो इतनी कुरूप थी, कहते उसका पेट नगारे जैसा था, सब माँ रामायण में वो सुंदर वर्णन दिया उसका कि कैसी थी वो। एनीवेज लेकिन वो अपने आप को सुंदर मानती थी, तो प्रभु कहते हैं देखो ऐसा है कि मैं तो विवाहित हूँ, देखिए मेरी पत्नी है तो मैं आपके साथ तो विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भाई जो है अपनी पत्नी को घर छोड़कर आया है, वो शायद आपकी बात को कंसिडर कर सकता है, उसे भी अपनी पत्नी का विरह है। तो वहाँ जाती है वो, तो वो कहता है कि अरे मुझसे विवाह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमको दासी बनना होगा क्योंकि मैं तो इनका दास हूँ, और दास की पत्नी का उन्हें दासी होती है, तो तुमको दासी बनने के तैयार है तो मैं तैयार हूँ। तो उसको बड़ा अपमान लगता है उसका, मैं दासी बनेंगे तो मैं तो तुम्हारे ऐसे मनुष्य को खाती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो फिर वो दोबारा राम के पास जाती है कि नहीं वही आपके पति होने के योग्य हैं, तो प्रभु राम जी उनको वही कहते हैं। तब उसको लगता है कि ये दोनों की जो बातों की जड़ जो है ये स्त्री है, इसकी वजह से दोनों, ये दास की बात कर रहा है, ये एक पत्नी पता की बात कर रहा है, मैं इसी को खा जाऊंगी तो फिर सब मामला सिल जाएगा पूरा। तो उसकी ओर झपटती है वो, तब प्रभु कहते हैं लक्ष्मण बहुत हो गया अब इसका इलाज करो। तो लक्ष्मण हवा की गति से तलवार निकालकर इतनी मतलब पलके झपकने के पहले ही उसके नाक और दो कान काट देते हैं। वेरी स्किलफुल एम्पुटेशन सर्जरी, हाँ, और उसको उठाकर गोदावरी के उस तरफ फेंक देते हैं, इसलिए जहां पर नासिका को फेंक दिया गया वहां बना नासिक, और इस तरफ था पंचवटी जहां पर ये लोग रह रहे हैं, और बीच में गोदावरी जाती है ना, ये जो पूरा दंडकारण्य है इसको दो जगह में विभाजित किया गया उस घटना के अनुसार। तो जहां पर नासिका गिरी उसको आजकल नासिक कहते हैं, जहां पर वो रह रहे थे, जहां पर पंचवटी वृक्ष है वहां पर उसको पंचवटी कहते हैं। तो वो बहुत चीखने लगी जोर जोर से, खून से लथपथ हो गई, बहुत क्रोध आया उसको अपमान होने की वजह से। भाग के अपने भाइयों के पास गई, वहां पर रावण के 2 भाई और 14,000 योद्धा वहां रहते थे। तो मैं उसकी जो कहानी है वो आपको मैं वहां पर बताऊंगा, हाँ यहाँ पर ये घटना हुई थी। तो एनीवेज फिर प्रभु सीता देवी को अग्निदेव के पास देते हैं, वो सब कहानी मैं आपको तपोवन में बताऊंगा। तो फिर खरदूषण का युद्ध होता है, खरदूषण का वध होता है, त्रिशिर का भी वध होता है, और एक व्यक्ति जो है भागकर लंका पहुंचता है, अनु अकंपन नाम है उसका, वो भी एक रावण का एक पुत्रों में से एक है। तो कोई चाहिए ना खबर पहुंचाने के लिए कि कैसा कैसा हुआ क्या हुआ, तो वो स्ट्रेटेजिकली भाग जाता है। यहाँ पर तीनों का मृत्यु होता है और सूर्पणखा भी पहुंच जाती है रावण को बताने के लिए। रावण मारीच के पास पहुंचता है, ये सब आपको वहां बताएंगे। हाँ फिर रावण साधु का भेष पहनकर सीता का हरण कर लेता है, और सीता जो है वो जोर शोर से चिल्लाती है, वन देवताओं, हे वृक्षों, हे दिशा के दिग देवताओं, हे दिग्दर्शकों, हे लोकपालों, हे देवताओं, मुझे बचाओ और मेरे प्रभु को बताओ कि ये दुष्ट रावण मुझे कहाँ ले गया है। तो फिर वो अपने गहने जो है वो एक एक करके फेंकने लगती है। अब ये गहनों की कहानी बताना भी जरूरी है, क्योंकि वहां पर जब निकले थे तो खाली वलकल पहन के निकले थे, तो गहने कहाँ से आ गए? उधर पंपा सरोवर जो है ना उधर हम्पी में, वहां पर वो गहने इतने भारी थे कि जब उसने कुछ फेंके तो कुछ दंडकारण्य में गिरे, कुछ जाकर किष्किंधा में गिरे, और जब वो गिरे तो पहाड़ों के पत्थरों पर ऐसा छेद बना है उसका, उसकी वजह से। देयर आर साइंस एंड सिम्टम्स कि इतना आघात हुआ जैसे वज्राघात हुआ, और वो पत्थर में छेद होके चिन्ह बने हुए उसके कि यहां पर वो अलंकार गिरे थे। कितने अलंकार थे उसके अंदर। तो वनवास में चित्रकूट में एक बार उनकी मुलाकात अनसुया से होती है, जो अत्रि मुनि की पत्नी है। हाँ अत्रि मुनि की पत्नी जो अनसुया है वो कर्दम मुनि की 9 कन्याओं में से एक कन्या है, ऐसे 9 महान कन्या उनको हुई, उसमें से एक थी अनसुया, जो सतीत्व के लिए बहुत प्रसिद्ध है, महान सती थी वो, पतिव्रता। तो उसके पास जाती है सीता देवी और उसके उपदेश सुनती है। तब अनसुया देवी उसको अपने सारे गहने भेंट में देती है, तुम भले वनवास में हो लेकिन तुम रानी हो, राजकन्या भी हो रानी भी हो, तुमको ये अलंकार पहन के रहना चाहिए, सौभाग्यवती भी हो। तो उसके आदेश के अनुसार वो गहने पहने रहते। ऐसा नहीं कि उनको जंगल में भी बहुत शौक था गहने पहनने का, इसलिए उसने मांग लिए आपके पास बहुत सारे मुझे भी दे देना, थोड़ा बहुत मैं भी पहन लूंगी, मैं बहुत सुनी सुनी लगती हूँ, ऐसा नहीं था। सती अनसुया ने पतिव्रता धर्म के उपदेश के अंदर उसको ये भेंट में दिया था, और वो गहने वो तभी एक एक करके उतार कर फेंकने लगी। रावण जोर जोर से ठहाका मार कहने लगा, पुकारो और पुकारो, अब तुम्हें पुकार कोई सुनने वाला नहीं है, सारे देवी देवता को मैं परास्त कर चुका हूं, किसी की हिम्मत नहीं आपको बचाने के आने के लिए, पुकारो और जोर से पुकारो। तो वो पुकारती जा रही है, हे वन देवताओं, हे ग्राम्य देवताओं, हे दिग्दर्शकों, हे लोकपालों, हे देवताओं, नीचे देख रही है, ऊपर देख रही है, सब जगह। और रावण ठहाके मार के हंस रहा है, और हवा की गति से उसका जो रथ है वो आकाश से जा रहा है। उतने में आवाज आती है, रुक जाओ रावण, रुक जाओ। रावण देखता है एकदम गर्व से, कौन है वो जिसकी हिम्मत है हमें कहने की, केवल रुकने की, ऐसी हिम्मत किसकी है? आवाज और तेज होती है, रावण रुक जाओ, तुम कायर हो, तुम किसी की स्त्री को, अबला स्त्री को उठाकर लाए हो, उसके पति के ना होते हुए तुम बहुत डरपोक हो, अपने आप को बड़ा वीर समझते हो, लेकिन छल कपट करके तुमने किसी की कन्या को उठाया है, डरपोक हो, रुक जाओ, मुझसे युद्ध करो। उनको और आश्चर्य होता है, अरे इतनी हिम्मत किसकी है जो मुझे युद्ध को ललकार सके, मैं तो कुबेर को भी परास्त करके आ रहा हूं। तो कुछ देर बाद में एक बड़ा सफेद रंग का पहाड़ जैसा आकार का पक्षी वहां प्रकट होता है, उसकी उम्र उस समय 60,000 साल थी, क्योंकि त्रेता युग में आयु होती है 1,00,000 साल की, और जब त्रेता युग आगे बढ़ता है तो वो धीरे धीरे कम 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 होते हुए 10,000 साल तक आ जाती है। ये तो बीच त्रेता युग की कथा है। ऐसे कहते थे कि जटायु अपने युवावस्था में बहुत ज्यादा बलशाली थे, वे वृद्धावस्था में आए थे और उनकी वृद्धावस्था के सामने रावण जवान अवस्था में था, फिर भी वो देखता है कि मेरे मित्र का पुत्र राम की ये पत्नी है जिसको ये दुष्ट जो है छीन कर ले जा रहा है, उसको ललकारता है, मुझसे युद्ध करो उसके बाद ही सोचो उसको ले जाने का। अरे बूढ़े पंछी, जाओ किसी पेड़ पर बैठ कर आराम करो, हमारे रास्ते में मत आओ वरना पछताओगे। मैं बूढ़ा जरूर हूं लेकिन मेरे जीते जी तुम विदेह राजकन्या सीता देवी को नहीं ले जा सकते। ऐसे करके फिर वो युद्ध शुरू होता है। अभी उनका युद्ध का इतना सुंदर वर्णन है कि रावण के पास में एक भव्य दिव्य रत्नों से भरा हुआ धनुष था, रावण रथ में था, उसके पास खच्चर थे, खच्चर एज हॉर्स के बदले में खच्चर थे, और आकाश में वो उड़ रहा था और आकाश में बहुत भयंकर युद्ध शुरू हुआ। तो अपने पंजों से रावण की पीठ को पूरा फाड़ के उसका मांस निकाल दिया रावण जटायु ने, फिर खच्चरों को मार दिया और खच्चरों को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, सारे रथ को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया, उसका ध्वजा तोड़ दिया, उसका कैनोपी तोड़ दिया जो था ना उसका ऊपर का, सारे पहिए तोड़ दिए, पहले खच्चरों को मार दिया और रथ जो है वो टुकड़े टुकड़े होटर होकर आकाश से जमीन पर गिर पड़ा सीता देवी के साथ, रावण के साथ, और रत्नों से भरा हुआ रावण का धनुष भी जटायु तोड़ देते हैं। इतना बड़ा साहस तो कोई नहीं कर सकता है रावण के सामने, फिर भी जटायु बार बार लड़कारते हैं कि तुम पापी हो, तुम दुष्ट हो, तुम डरपोक हो। उसके बाद में रावण का जो चिलखत है ना वो आर्मर, उसको तोड़ देते हैं, उसको मुकुट को उखाड़ के फेंक देते हैं, और मुकुट को उठाकर फेंक देने के बाद सब लोग सावधानी से सुनिए, रावण के बालों को पकड़कर कई मील तक उसको घसीटते हैं जटायु। देखो जब उसके बाद में रावण को कई मील तक घसीटने के बाद में रावण के 10 हाथ जटायु उखाड़ देते हैं, लेकिन जैसे सांप के बिल में से सांप निकलते हैं वैसे वो 10 छेदों में से 10 हाथ दोबारा पैदा होते हैं, ऐसे वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं। क्योंकि हाथ उखाड़ने के बाद वहां पर छेद गड्ढे निर्माण होते हैं ना, तो उस गड्ढे में से हाथ के रूप में सांप जैसे निकलते हैं वैसे हाथ निकलते हैं, और रावण फिर से ठहाका मार के हंसता है, तुम समझते हो तुम मेरे हाथ काटोगे, जितनी बार काटोगे उतनी बार वो पैदा होंगे, काट लो जितनी बार काटना है उतना। लेकिन जब वो उसको बाल पकड़ के घसीटता है तब रावण सोचते हैं बस अभी इनफ इज इनफ, क्योंकि रावण को लगता था कि वो तो बूढ़ा आदमी है तो क्या लड़ेगा मुझके साथ में, ऐसे ऐसे मैं उसको एक एक हाथ में मार दूंगा, लेकिन देख रहा था कि ये तो बहुत जिद्दी योद्धा है, छोड़ नहीं रहा है इस चीज को। तो फिर कहते बस इनफ इज इनफ, तो अपना चंद्रहास खड़ग निकालता है। वो चंद्रहास खड़ग का ऐसा महात्म्य था कि उसकी केवल निकालने के बाद ही चमक देखकर ही देवता लोग भाग जाते थे, इतना शक्ति था उस चंद्रहास का, इतना गौरव था कि कोई भी देवता उस चंद्रहास खड़ग को निकलने के बाद में रावण के सामने टिक नहीं पाते थे, तुरंत भाग जाते थे युद्ध छोड़कर। वो चंद्रहास जैसे हजारों सूर्यों की तरह चमक थी उसके अंदर, उसको निकाल कर फिर रावण दोनों पंख काटता है जटायु के और दोनों पैर काटता है और जोर जोर से ठहाके मार के हंसता है। और इस सारे समय में सीता देवी ऐसे चिल्ला रही है, जटायु तात आप इसे युद्ध मत करो, ये बहुत बलशाली है, आप वृद्ध हैं, आप केवल मेरे प्रभु को बताना जाकर कि ये दुष्ट रावण मुझे कहां किस दिशा में ले गया है, कृपा करके आप युद्ध नहीं करना, ये बहुत ही दुष्ट और बहुत ही बलशाली है। तो कहते विदय नंदिनी आप चिंता मत करना, मैं इसको जरूर मार दूंगा, मैं आपको उसको अपहरण करने नहीं दूंगा, आप निश्चिंत रहो। ऐसे कहते हैं कि उसको सांत्वना दे रहे हैं, इसको ललकार रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, और आखिरकार ऐसे कहा गया है कि जैसे सूरज जब ढलता है तो सारे बादलों पर एक सुनहरी लाइन आ जाती है, वैसे एक भव्य और दिव्य सफेद रंग के पहाड़ जैसे बादल पर खून से भरा हुआ ऐसा दृश्य पैदा होता आकाश में। उसके बादल पर कोई खून की लकीर निर्माण हो जाए और वो बादल गिरता हुआ आकाश से जमीन पर लौट आए, ऐसा भयंकर दृश्य है वो। इसमें जटायु का सफेद शरीर जो है पहाड़ जो वो खून से लथपथ हुआ है और वैसे गोल 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 घूमते हुए रावण ठहाका मार के हंस रहा है और जटायु रक्त बंबाल होकर जमीन पर आके गिर जाता है। ऐसे कहा गया है सूर्यास्त के समय जब लाल रंग की लालिमा सफेद बादलों पर चल जाती है उस तरह से जटायु आकाश से जमीन पर गिर जाते हैं। उस समय नदियां रुक जाती है, हवा बहना बंद कर देती है, सूर्य और चंद्र निस्तेज हो जाते हैं और पंछी रोने लगते हैं और जटायु गिर जाते हैं। जटायु गिर जाते हैं वो ये जगह है जहां पर हम बैठे हैं। इसी जगह पर जटायु ने खुद 60,000 साल के वृद्ध अवस्था में होने पर भी एक अन्याय को होते हुए देखकर अपनी जान की बाजी लगा ली, अपना देह यहां पर छोड़ दिया। लेकिन जटायु जो है इतने खून को खो चुके थे कि उनके शरीर का आखिरी खून का बूंद भी बह चुका था, लेकिन फिर भी सीता देवी का जो इच्छा थी वो उनको पूरा करना था। प्रभु रामचंद्र को संदेश देना है क्योंकि उन्होंने खुद रावण को देखा था, सीता को छीने हुए देखा था और सब घटना को उसको दर्शन किया था, वो साक्षी था उस घटना का। अगर वो मरते थे तो इसका आंखों देखा हाल राम को बताने के लिए वहां पर कोई नहीं था। इसलिए इतना सारा खून बहने पर, पूरी ग्लानी की बेहोश जैसी अवस्था होने पर मुख से राम 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 का उच्चारण करते हुए जटायु वहां पर जीवित रहते हैं, केवल हड्डियों में अपने प्राण को बनाए रखते हुए कि जब तक मैं हूं तो मेरे मुख से एक बार ये संदेश दे दूं फिर मैं मरने के लिए मुक्त हो जाता हूं। यहां पर प्रभु लौट के आते हैं, देखते हैं कुटिया में सीता नहीं है, सब जगह ढूंढते हैं उसकी, जहां फूल बिनने की जगह है, जहां पर कुछ करने की जगह है, पानी लाने की जगह है, सब जगह ढूंढते कहीं भी नहीं मिलती है, पुकारते हैं उसका जवाब नहीं मिलता है, जोर जोर से पुकारते हैं उसका जवाब नहीं मिलता है, वन्य देवताओं को ग्राम देवताओं को पुकारते कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर समझ जाते हैं कि सीता का अपहरण हो चुका है। फिर वो धनुष उतारे हुए ढूंढते ढूंढते पूरे दंडक वन में पुकार रहे हैं, लताओं को पूछ रहे हैं, पताओं को पूछ रहे हैं, रो रहे हैं और पुकारते पुकारते फिर यहां आते हैं और देखते हैं कि इतना विशाल वृक्ष रथ जो है वो टुकड़े होकर गिर गया है, बहुत खून गिरा हुआ है, शस्त्र अस्त्र टूटा हुआ धनुष दिखता है, बड़ा धनुष रत्नों से भरा हुआ किसी बड़े योद्धा का होगा ऐसे टूटा हुआ है और कुछ गहने भी गिरे हैं, सब कुछ है, मिक्सचर ऑफ थिंग्स। देखते हैं कि अरे तो गहने तो सीता के हैं, देखो देखो लक्ष्मण गहने को देखो, सीता के कंगन है, सीता के गले का हार है, देखो देखो पहचानो इनको। लक्ष्मण कहते हैं मैंने तो भाभी के चरणों के ऊपर कभी भी मेरे नजर को उठाया ही नहीं, मैं केवल उनको घुंघरू को पहचान सकता हूँ, पायल को पहचान सकता हूँ, पायल तो उन्हीं के हैं लेकिन कंगन और गले का हार मैं नहीं पहचान सकता। कितने महान थे लक्ष्मण, देखो आप जंगल में रहते हुए भी कभी भी सीता देवी को अपनी भाभी को चरणों से ऊपर उठाकर नहीं देखा नजर, तो फिर वो पहचान लेते कि सीता देवी की है। और जो बातें हो रही है दुख भी हो रहा है कि हाँ खून दिखाई पड़ रहा है, टूटा हुआ रथ दिखाई पड़ रहा है, लगता है किसी श्वापद ने मेरी सीता को खा लिया होगा, और पहचान भी ले रहे हैं कि हाँ सीता के गहने हैं, थोड़ी खुशी भी हो रही है, थोड़ा दुख, बहुत थोड़ा दुख हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। उतने में उनको वो भयंकर जो गीद है वल्चर वो दिखाई पड़ता है, तो उनको लगता है कि इसी ने मेरे सीता को मार कर खाया होगा, तुरंत धनुष उतार लेते हैं। लक्ष्मण अभी मैं इस दुष्ट का वध कर देता हूं, लगता है इसी ने मेरी मृगनयनी सीता का वध करके उसका भोजन किया हुआ है। और वो धनुष उतार कर जाते हैं, उनके कान पर आवाज आती है राम राम राम, तुरंत धनुष नीचे करते हैं और दोनों भाग कर वहां पहुंचते हैं तो पहचान देते हैं, ये तो तात जटायु है क्योंकि वही तो छोड़ने के लिए आए थे ना उनको, भाववश तुरंत उनको पहचानते नहीं है क्योंकि इतना दुख है कि सीता देवी को खो गए हैं, भाव अतिरेक में वो समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा करो, फिर पहचानते हैं उनको, तुरंत उनको अपनी गोद में लेते हैं और आखिरी सिसकिया आखिरी सांस हिचकिया लेते हुए प्रयत्न पूर्वक बड़े कष्ट के साथ जटायु उनका पूरा वृत्तांत सुनाते हैं, इतना सुना सकते हैं जितना समय उनके पास में है, उतना कष्ट करके वो जितना हो सके उनको सब सुना देते हैं, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, फिर मैं कैसे कैसे आया, फिर वो क्या बोल रही थी, फिर मैंने क्या किया, फिर ऐसा हुआ, मैं उसको जाने नहीं देता लेकिन मैं वृद्ध हो चुका था, आखिर मेरी ये अवस्था उसने कर दी है और वो दक्षिण दिशा में आकाश मार्ग से सीता को ले गया है, उसकी भी ये इच्छा थी कि मैं आप तक ये संदेश पहुंचाऊं, इसलिए मैंने अपने आप को जीवित रखा जो मैं कभी का मर चुका होता। और ये कहते कहते राम का नाम लेते हुए राम की गोद में जटायु अपना प्राण छोड़ देते हैं। फिर लक्ष्मण को राम आदेश देते हैं, लक्ष्मण यहीं पर चिता का इंतजाम करो, मैं स्वयं तात जटायु का दाह संस्कार करूंगा। लक्ष्मण जी बड़े दुख से जंगल से लकड़ियां तोड़कर चिता बनाते हैं, उस पर विशाल पहाड़ जैसा देह जो है उसको उठाकर रखते हैं और प्रभु रामचंद्र स्वयं अपने हाथ से उस चिता को अग्नि देते हैं। कहते तात, आपकी श्रेष्ठ सेवा की वजह से आप तुरंत ही मेरे दिव्य अयोध्या धाम में प्रवेश करोगे और उस लोक में सच्चिदानंद रूप में आप अपना जीवन बिताओगे और तुरंत उनके आंखों के सामने जटायु की आत्मा जो है वो रथ में बैठकर वैकुंठ गमन कर देती है। सबके आंखों के सामने, मतलब लक्ष्मण और राम जी के आंखों के सामने जटायु जो है अयोध्या लोक में प्रवेश करते हैं जो गौलोक के पास में है। हाँ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, फिर गौलोक, वहां पर जटायु जी प्रवेश करते हैं। तो हम देख सकते हैं कितना जटायु का त्याग है इसके अंदर। जटायु का ऐसा भाग्य था कि प्रभु रामचंद्र जब वनवास चले गए तो वहां पर दशरथ महाराज जो है वो फूट फूट कर रोते रहे, पुकारते रहे, भूख प्यास सब छोड़कर रोते रहे, रोते रहे, पुकारते 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 विरह में ही शरीर छोड़ दिया उन्होंने और भरत ने उनका दाह संस्कार किया उधर ही अयोध्या में। और फिर वो उनको मिलने आए जंगल में जब गुआ राजा के राज्य में थे, वो राज्याभिषेक करने के लिए, और तब वो पूछते हैं तात कहाँ है और ये हमारी माता सफेद वस्त्र में क्यों है। तब वो कहते हैं कि पिताजी तू चले गए, तुम्हारे विरह में पुकारते पुकारते चले गए वो। तो राम जी बहुत फुट फुट कर रोते हैं क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी पिता का दाह संस्कार करने का भाग्य उनको प्राप्त नहीं होता है। जटायु को देखो, स्वयं अपने हाथ से उसको मुखाग्नि देते हैं, उसका उद्धार करते हैं। जो भाग्य दशरथ को भी प्राप्त नहीं हुआ वो जटायु को प्राप्त हुआ। फिर जटायु का जब भगवान ने अंत संस्कार किया तो एक तो उनके गोद में उनके शरीर त्याग दिया, प्रभु राम के गोद में, और उनके हाथ में संस्कार होकर अयोध्या प्राप्त किया। और जब उनका संस्कार भगवान ने किया तो भगवान ने उनको पूरी तरह से आध्यात्मिक लाभ देने के लिए जितने तीर्थ विश्व में हैं सब तीर्थों को यहाँ पर आह्वान किया। जितनी नदियाँ हैं, जितने पर्वत हैं, जितने तालाब हैं, जितने तीर्थ धाम क्षेत्र हैं, सबको यहाँ पर आह्वान किया ताकि उनकी उपस्थिति में उनका अंतिम गमन संस्कार हो। तो सभी तीर्थ जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और एक एक बड़ा जगह है जहाँ पर सब इकट्ठा होकर वो जल प्रवाह हो रहा है और एक बाजू में एक बनाया हुआ है। अब हम जाके पूछेंगे उसमें कौन सा क्या है। उसमें से उसका रहस्य ऐसा है कि सभी तीर्थ समय पर वहाँ पर उपस्थित हो गए और उनकी उपस्थिति में वहाँ पर एक बड़ा जल जो क्या कहते हैं उसको प्रवाह निर्माण हो गया, जिसमें फिर उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया, खुद भी स्नान किया और सबको यहीं पर रहने का आदेश दिया कि आप सब तीर्थों यहीं निवास करो, इस जगह को ऐसे पवित्र बनाए रखो। लेकिन त्रिवेणी संगम प्रयागराज जो है वो थोड़ी देर से आए तो उनको उन्होंने बाजू में स्नान दिया, उसको अंदर आने के लिए प्रवेश नहीं दिया, इसलिए प्रयागराज जो है वो भी यहाँ प्रकट है गंगा जमुना सरस्वती तीन नदियों का संगम जो है वो भी यहाँ पर प्रकट है। सारे तीर्थ जितनी नदियां पर्वत कुंड तालाब सरोवर सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसलिए ये बहुत पवित्र जगह है। पूरे विश्व के जितने तीर्थ हैं सब यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अभी जटायु के इस कथा से हम क्या सीख सकते हैं? अरे हम लोग कहते हैं, हमारे हॉस्पिटल में कुछ लोग कहते हैं, अरे प्रभु जी आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो अच्छे घर के हो, आपके जाति के ब्राह्मण भी हो, आप लोग से भक्ति भक्ति सब कर सकते हो। हम लोग बेचारे गरीब लोग, ना पढ़े लिखे ना अच्छे कुल के, ना दिखने में अच्छे ना पढ़े लिखे, क्या कर सकते हैं? जटायु मनुष्य भी नहीं था, वो तो गिदड़ था और गिदड़ की योनि को बहुत अपवित्र माना गया है। भक्ति भक्ति तो दूर रह गई, ये तो जो भक्त मरते हैं उनको खाने के लिए आ जाते हैं, इतनी निचली योनि है उनकी, गीत की योनि। पंछी योनि तो उसमें गरुड़ भी है, उसमें तो मोर भी है, उसमें तोता भी है, कोयल भी है, लोग पसंद करते हैं उनको। लेकिन पक्षियों की जो योनि है वो मनुष्य की योनि से भी नीचे है, उसमें तो बहुत यात्रा करनी पड़ती है मनुष्य बनने के लिए आगे, बहुत निचले स्तर पर है। जलजा नवलक्षाणी, फिर उधर से खग, उसमें फिर सस्तन प्राणी, फिर उसमें उसके पहले पेट, बहुत सारा चीज़ है उसके अंदर, बाद में फिर मनुष्य बनते हैं। तो वैसे ही पक्षी जाति जो है मनुष्य से नीचे हैं, और उसमें भी ये सबसे नीचे हैं गीद में, फिर भी भगवान की भक्ति में ये परिपूर्ण बने। तो हमें कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हम तो वैसे हैं, हम तो कमज़ोर हैं, हम तो ये हैं, हम तो गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई बहाना हम नहीं बना सकते हैं। इधर गिदड़ जटायु का उदाहरण देखकर भगवान की भक्ति में भगवान ने ये खुद साबित किया है कि मेरी भक्ति कोई भी कर सकता है। कोई जाति वाति धर्म देश भाषा रंग वर्ण भेद कोई नहीं होता है उसके अंदर। यहाँ तो ये भी दिखाया है जाति वाति के परे जाकर जो निचली योनि है उसमें से भी जो न्यून योनि है वो भी मेरा परम श्रेष्ठ भक्त बन सकती है, परम धाम की गति को प्राप्त कर सकती है। सर्वोच्च प्राप्ति जो है वो जटायु ने गीत के रूप में यहाँ प्राप्त किया है। दूसरा हम क्या सीख सकते हैं कि रावण को तो मार नहीं सके, खुद मर गए, एक तरह से परास्त हो गए ना, वो अयशस्वी हो गए। लेकिन ऐसे कहा गया है कि अर्जुन ने भी युद्ध किया था महाभारत का, अर्जुन विजयी हो गए थे और राजा बन गए, वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए। लेकिन अर्जुन के युद्ध को जीतने में जो सफलता थी उससे हजारों गुना अनंत गुना सफलता जटायु को मृत्यु के द्वारा प्राप्त हुई। जटायु मृत्यु को प्राप्त हो गए, एक तरह से लौकिक दृष्टि से अयशस्वी हो गए, पराजित हो गए, वो देह त्याग करना पड़ा उस युद्ध में, अपने काम में भी यशस्वी नहीं हुए, सीता तो हरण हो गई ना, फिर भी आचार्य बताते हैं कि जटायु की मृत्यु में उसकी परम सफलता निहित है उसके अंदर। इसलिए भक्ति में क्या प्राप्त होता है इसको हम लौकिक दृष्टि से समझ नहीं सकते। हम क्या समझते हैं, हमने जब किया तुम्हारा प्रमोशन हो गया, हमने जब किया तुम्हारे बेटे की शादी हो गई, हम जब कर रहे हैं तो बेटे का MBBS में एडमिशन हो गया, हम जब कर रहे हैं तो बेटा विदेश गया, ये जब बहुत बढ़िया है। और कोई कहेगा हमने जब किया तो हमारा बेटी मर गई, तो हमारा लड़का मर गया, और हमारा चोरी हो गई, हमारे घर में आग लग गई, हम जब नहीं कर रहे हैं। वो क्या सोचते हैं कि जब करना मतलब सब अच्छा होना चाहिए, लेकिन भक्त ऐसा सोचता नहीं है। भक्त के लिए शुभ अशुभ किस पे पहचानते हैं? जिस घटना के बाद में भगवान की याद आती है वो घटना शुभ मानी जाती है। ऑस्पिशियसनेस इज दैट इवेंट विच मेक्स यू रिमेम्बर द लॉर्ड। तो भगवान की याद आती है तो वो घटना कितनी भी खौफनाक क्यों ना हो वो घटना शुभ होती है, क्योंकि इस जीवन में भगवान की याद करना ये सबसे बड़ा भाग्य और सबसे बड़ी पवित्रता है और सबसे बड़ी शुभता है। तो जटायु मृत्यु को प्राप्त होने पर भी परम यशस्वी हो गए। इसलिए हमको भी हमारे जीवन में जब बुरी घटना होती है या अप्रिय चीजों को हमको सामना करना पड़ता है तो ये सोचना नहीं चाहिए कि हमारा पराजय हो रहा है, ये हमारी भक्ति का पराजय है, ये मत समझना। हर एक आने वाली अच्छी या तथाकथित बुरी घटना जो है वो हमारे परम लक्ष्य को प्राप्त करने वाले मार्ग में एक स्टेशन है जो भगवान के द्वारा नियोजित है, और भगवान हमारे कल्याण के लिए उन्हीं के द्वारा ये अच्छी बुरी तथाकथित अच्छी बुरी घटनाएं हमारे जीवन में भेजते हैं, और वो सब अच्छी ही होती है। अगर वो अंतिम रूप में अगर आपको भगवान से मिलन करा देती है तो वो तथाकथित अच्छी बुरी चीजें अच्छी ही होती हैं। थर्ड, नथिंग कैन स्टॉप वन फ्रॉम सर्विंग द लॉर्ड. जटायु के लिए हर एक चीज उल्टी थी. उम्र से वो बूढ़े थे, रावण जवान था. रावण उनसे कई गुना शक्तिशाली था और वो इतने शक्तिशाली थे लेकिन रावण के सामने नहीं थे. और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट थे उसके लिए? वो पक्षी थे, ये तो राक्षस था. हथियार नहीं थे उसके पास, वो तो रथ में था, सशस्त्र था पूरा. और नेगेटिव पॉइंट क्या था बताइए? हर प्रकार के क्या कहते हैं उसको, प्रतिकूल स्थितियां होने पर भी उसने प्रभु की सेवा नहीं छोड़ी. सीता जी उनको बोल रही थी क्या, आप युद्ध मत करना, आप नहीं जीत सकते, खाली आपको संदेश बताना है, बस उतना ही करना, बस हो गया. ये उसने सोचा कि अगर मैं जीवित हूं तो मेरे आंखों के सामने सीता का हरण नहीं होना चाहिए, मैं मर गया तो आगे की बात आगे है. तो वो प्रतिकूल, हर तरह से जो प्रतिकूल स्थिति थी उसमें कुछ जीतने का, कोई सफल होने का कोई चांस नहीं था. तो हम लोग क्या करेंगे, क्यों करना है उसको, क्यों एनर्जी वेस्ट करना है? उसे एनर्जी वेस्ट नहीं किया, पूरा जीवन दानी दे दिया पूरा. इसलिए पूरे आचार्यों के दृष्टि से, अध्यात्म के दृष्टि से जटायु का समर्पण जो है वो सर्वश्रेष्ठ है. क्योंकि अगर यश मिल रहा है तो आप भी त्याग करेंगे. अगर आपको यश का प्रलोभन दिखाई पड़ रहा है तो आप भी सब कुछ, धन बोलो सब कुछ त्याग कर सकते, दिखाई पड़ सकते हो. जटायु ने तब समर्पण किया है, तब त्याग किया है जब कोई जीतने का कोई फेवरेबल चीज नहीं था उसके अंदर. तो हमें जीवन में कोई भी स्थिति भगवान की भक्ति करने से रोकना नहीं चाहिए, ना हमें रोकने देना चाहिए. हर स्थिति में ऐसे रूप गोस्वामी बताते हैं कि नो मटेरियल थिंग कैन ऑब्स्ट्रक्ट यू फ्रॉम सर्विंग द लॉर्ड. भगवान की भक्ति की प्रक्रिया में कोई भी भौतिक घटना आपको बाधा नहीं दे सकती. इट हैज नो पावर इन इटसेल्फ. हम लोग हार जाएंगे तो फिर हम लोग वश हो जाएंगे उसके, लेकिन अपने आप में दुनिया की किसी भी वस्तु या घटना में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपको वो भगवान की भक्ति करने में रोक सके. क्योंकि भगवान की भक्ति दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, तीन गुणों के परे है, कोई भौतिक गुण का प्रभाव नहीं है उसके अंदर. जटायु ने मृत्यु को कैसे प्राप्त हो किया जाता है उसका एक श्रेष्ठ उदाहरण यहां पर खड़ा किया. अरे मरते तो सब लोग दुनिया में हैं, किसको यहाँ पर परमानेंट जीना है? हाँ, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई ट्रेन से गिर के मर रहा है, कोई नशा करके मर रहा है, कोई दारू पी के मर रहा है. हाँ, किसी को कोई दारू नहीं पी रहा है फिर भी उसको लीवर का डिसीज हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है स्ट्रेस की वजह से. सबको मरना है दुनिया में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मरना कैसे चाहिए ये आदर्श जटायु ने यहाँ पर खड़ा किया है. भगवान की स्मृति में भगवान की सेवा करते हुए पूरी शक्ति के साथ में, पूरी शक्ति भगवान के सेवा में लगाते हुए मृत्यु होनी चाहिए. ऐसे व्यक्ति का गौलोक धाम प्रवेश निश्चित होता है. आम आदमी की तरह मरना तो कोई बड़ी बात नहीं, वैसे ही हम काल हमें मार देगा, लेकिन काल भी जिसको मार नहीं सकता है ऐसी मृत्यु जटायु ने यहां पर प्रकट की है. काल ने जरूर शरीर को छीन लिया है लेकिन आत्मा तो भगवान की कृपा से गौलोक धाम, अयोध्या धाम चली गई. इसलिए हमारे महाराज जी अपनी किताब में लिखते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग. आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या है, जीवन की कला कैसी है, भगवान की सेवा में रहना है, सब कुछ कर्तव्यों को निभाते हुए हमको भगवान की सेवा में जीवन चलाना है. और उसी भावना से इस शरीर के कण कण को, खून की बूंद बूंद को, सांस की हर धड़कन को और हर सांस की कशिश को हमको भगवान की सेवा में अर्पण करना है. तब जाकर हमारा जीना भी धन्य है, हमारा मृत्यु भी धन्य है, और मृत्यु के बाद का जीवन भी धन्य है. ये जटायु ने यहां पर साबित किया है. तो इस तरह से तथाकथित अपयश जो है वो कैसे दिव्य दृष्टि से एक महान यश साबित हुआ. इसलिए लास्ट में यहां लिखा है डोंट गिव रीजंस. कोई कारण मत देना कभी, क्योंकि अगर जटायु गीत बनकर भगवान की सेवा करके अपने शरीर को त्याग कर सकता है, परम गति को प्राप्त कर सकता है, तो हमारे जीवन में ऐसा कोई कारण नहीं जो हमें आगे कर सकते हैं. हाँ, अभी पुस्तक वितरण का महीना चल रहा है, कितने कारण है हमारे पास कि हम नहीं कर सकते उसको. प्रभु नहीं कर सकते, प्रभु जी ये समय सही नहीं है, प्रभु बिजी है, प्रभु बच्चों की इसमें, प्रभु ये है, प्रभु हेल्थ सही नहीं है, प्रभु जी घर में मेहमान आए हुए हैं, प्रभु जी ये है, प्रभु जी वो है, कितने सारे बहाने. हाँ, अब बोलेंगे कि अभी वो बिरला मातोश्रमी नाटिका है तो किसी को बोलना पड़ता है कि आओ आओ करके, टिकट नहीं मिलते उसके। तो जहां पर भक्ति, भक्ति में भी जहां पर इंद्रिय सुख है वहां पर हम दौड़ते हैं, बराबर ना। जहां पर इंद्रिय सुख का कोई गुंजाइश है ना भक्ति मार्ग में, तो वहां पहले दौड़ते हैं हम लोग। जहां पर इंद्रिय सुख नहीं, बहुत कष्ट है, तड़पते हैं, वहां पर नहीं जाते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग बद्ध जीव है ना। जटायु बता रहे हैं चीख चीख कर, डोंट गिव रीजंस फॉर सर्विंग द लॉर्ड। जो भी है, जिस जितनी भी शक्ति है, जितनी भी क्षमता है, उसके साथ लगे रहो। भगवान आपको बुद्धि देंगे, भगवान आपको नई नई आइडिया देंगे, और भगवान आपसे सेवा करवाएंगे, और भगवान भी आपके लिए प्रतिकूल की जगह पर अनुकूल स्थितियां बनाएंगे, प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल बना देंगे। आपकी इच्छा होनी चाहिए। बृहद भागवतामृत में सनातन जी गोस्वामी लिखते हैं कि ऑल द वर्स्ट थिंग्स इन लाइफ टर्न आउट टू बी मोस्ट वंडरफुल थिंग्स फॉर दोज हु लव गॉड। जीवन की जितनी भी बहुत दर्दनाक खतरनाक घटनाएं होती है, वो सबका रूपांतर अनुकूल घटनाओं में होता है उन लोगों के लिए जो भगवान पर प्रेम करते हैं। तो भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। तथाकथित जो कष्ट दिखाई पड़ रहा है, प्रतिकूल घटनाएं दिखाई पड़ रही है, प्रतिकूल चीजें दिखाई पड़ रही है, वो सब अनुकूल बन सकती है। अगर हम चाहते हैं भगवान की सेवा करेंगे तो हमें दुनिया की कोई ताकत उनकी सेवा करने को रोक नहीं सकती। इसलिए जटायु मृत्यु के बाद भी पूरे विश्व को यहां पर ये शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि ये बहुत उत्कट जगह है। हाँ, दिखते हैं पेड़ आम आम दिखाई पड़ रहा, लेकिन इस जगह का सार जो है बहुत गहरा है, बहुत तीव्र है। जीवन भर के लिए पर्याप्त शिक्षा आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जटायु ने ऐसा उदाहरण यहां पर खड़ा कर दिया है। तो हम सब लोगों को हृदय से जटायु को प्रणाम करना चाहिए, बार बार वंदन करना चाहिए। और अभी इसी के साथ में मैं मेरी कथा को विराम देता हूं। और श्रीमान जटायु महाराज की, अनोखे भक्त जटायु महाराज की, प्रभु रामचंद्र की जय। जय श्री राधे श्याम। कोई प्रश्न है किसी का? एनी क्वेश्चन? पूरी कथा के समय जगह रहने के लिए आपका धन्यवाद है। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न है? श्री जटायु महाराज की जय। तो अभी